ज्ञानान जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है। सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय राधा बिहारी,
राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
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 यमुना तीर
thank you.
Govinda, 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 Radhe Govinda, Govinda.
गोपाल जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शशि गौर निताय की शील प्रोपाद की ओ
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते भागवतम स्कंद छे अध्याय पंद्रह श्लोक क्रमांक एक अथ पंचदशो अध्याय
अथ पंचदशो अध्याय
श्रीशुक उवाच
श्रीशुक उवाच
उच तो मृतकोपान्ते
उच त्रो मृतकोपान्ते
पतितं मृतकोपमं
पतितं मृतकोपमं
शोकाभिभूतं राजानं
शोकाभिभूतं राजानं
बोधयन्तो सदुक्तिभिः
बोधयन्तो सदुक्तिभिः
कोऽयं स्यात् राजेन्द्र
कोऽयं स्यात् राजेन्द्र
भवान् यमनुशोचति
भवान् यमनुशोचति
त्वं चास्य कतमः सृष्टो
त्वं सच कतमः सृष्टो
पुरे दानी मत परम्
पुरे दानी मतः परम्
यथा प्रायान्ति संयान्ति
यथा प्रयान्ति संयान्ति
स्तोत्र वेगेन बालुका
स्तोत्र वेगेन बालुका
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते
तथा कालेन देहिना
तथा कालेन देहिना
यथा धानासु वै धाना
यथा धानासु वै धाना
भवन्ति न भवन्ति च
भवन्ति न भवन्ति च
एवं भूतानि भूतेषु
एवं भूतानि भूतेषु
चोदितानि शमायया
चोदितानि शमायया
वयं च त्वं च ये चे मे
वयं च त्वं च ये चे मे
तुल्यकालाश्चराचरा
तुल्यकालाश्चराचरा
जन्म मृत्योर्यथा पश्चात्
जन्म मृत्योर्यथा पश्चात्
प्राग्नेव मधुनापि भो
प्राग्नेव मधुनापि भो
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा रविं बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने यस्या कदापि वसना चलखेलनोत धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानी योगी मधुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभा नुभो दिशेपि लीलाशुकोसो वृषभा चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको न न्यरहस्य पाठी गोलो प्रसाद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत मेत दे प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताज स्यसतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्मोत्किला भूरतेर्महतभी यई मा पुरो विभो निर्मायशेते यदमुष पुरुष भुंतेर्गुणानशो रशशो सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि मे
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस पंचम दिवस के पांचवें सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम जिसका अर्थ ही होता है भगवान का। प्रश्न होता है ये श्रीमद् भागवतम में क्या है। भगवत का अर्थ होता है भगवान और भागवत का अर्थ होता है भगवान का। जैसे वसुदेव के पुत्र होने के कारण कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवत भगवान के होने के कारण उसे भागवत कहा जाता है। इस भागवत में भगवान के चरित्र की कथा है और उसी के साथ साथ भगवान के भक्त भक्तों के अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन किया गया है। जिस चरित्रों का वर्णन सुनकर हम सब भगवान के प्रति सन्मुख हो सकते हैं। भगवान के भक्तों की कथा सुनना जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, आवाज बढ़ाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि यदि भगवान के भक्त को प्रसन्न करना हो, यदि भगवान के भक्त को खुश करना हो तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने पर भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि भगवान को प्रसन्न करना हो तो भगवान के भक्तों की कथा सुननी चाहिए। भगवान के भक्तों की कथा सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बार एक विद्वानों की सभा में प्रश्न उठा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा कौन है। तब विद्वानों की सभा में एक विद्वान ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी से ही अन्न पैदा होते हैं और उस अन्न के कारण सभी जीव जीवित रहते हैं। सबसे बड़ी पृथ्वी है। तब एक विद्वान ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, पृथ्वी से भी बड़ा सूर्य है, क्योंकि यदि सूर्य प्रकाश न दे तो पृथ्वी अन्न उत्पादन नहीं कर सकती है। और वैसे भी देखा जाए तो पृथ्वी की तुलना में सूर्य कई गुना बड़ा है, इसलिए पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। तब एक विद्वान पंडित ने कहा, नहीं नहीं, सूर्य कोई बड़ी वस्तु नहीं है, सूर्य से बड़ा तो भगवान का धाम है, क्योंकि भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है और ये सूर्य में जितना अक्षय तेज है, यह तेज भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मम तेज अंश संभव। सूर्य में यद्यपि बहुत तेज बहुत प्रकाश है, एक साथ हजारों कपड़े को सुखा देता है, गर्मी उत्पन्न करता है, परंतु वह तेज भगवान श्री विष्णु के अंग के एक अंगूठे के नाखून का प्रकाश मात्र है। भगवान का एक फूलिंग यदि कोई है तो वो है यह सूर्य। कल्पना करो भगवान कितने प्रकाशमान है और भगवान का धाम कितना प्रकाशमान है। तो उस विद्वान पंडित ने कहा कि नहीं नहीं, सूर्य से बड़े बड़ा भगवान का धाम है। तब एक भक्त ने खड़े होकर कहा कि भगवान के धाम से भी बड़े भगवान है, क्योंकि भगवान का धाम भगवान से प्रकट होता है, इसलिए भगवान जो है सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा और कोई नहीं है। बहुत बड़ी तालियां बजी, सब लोग ने प्रशंसा की। परंतु उस सभा में एक भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त बैठे थे। उन्होंने खड़े होकर कहा और अंतिम निर्णय दिया कि भगवान भी बड़े नहीं हैं, भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त हैं, क्योंकि साक्षात भगवान अपने मुख से कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्त के अधीन रहता हूं, मैं मेरे भक्त का सेवक हूं, नौकर हूं। इसलिए भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त भगवान से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में श्रेष्ठ भक्त चित्रकेतु महाराज की कथा छठे स्कंद में बताई गई है। यद्यपि वर्तमान में चित्रकेतु भक्त नहीं है, आप सब लोगों ने पिछले सत्रों में श्रवण किया किस प्रकार एक शूरसेन देश का राजा जो सभी धन ऐश्वर्य संपत्ति से युक्त था, उनके पास धन की ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक पुत्र की कमी होने के कारण राजा प्रतिदिन दुखी रहता था। एक दिन की बात, उनके महल में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा नाम के ऋषि पधारे और उनकी कृपा से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अंगिरा जी पुत्र देकर चले गए। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा हुआ, परंतु राजा की 1 करोड़ पत्नियां थी और जिस पत्नी के गर्भ से पुत्र जन्म लिया था उस पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ता गया और बाकी की सब पत्नियों के प्रति प्रेम घटता गया। इसलिए अन्य सभी पत्नियों को ईर्ष्या हुई और ईर्ष्या के डाह में आग में प्रवेश होकर नष्ट बुद्धयो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ईर्ष्या से नष्ट बुद्धि वाली वह स्त्रियां ने, सभी स्त्रियों ने, सभी पत्नियों ने मिलकर राजा के उस पुत्र को गरम ददु जहर पिला दिया। बहुत बहुत जतन करने के बाद राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई। ये बच्चों को नीचे बिठाइए, जिनके बच्चे हैं संभाल कर रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पुत्र की मृत्यु होने पर राजा अत्यंत दुखी हुए। हम सब इसका एहसास कर सकते हैं। आज इस संसार में हमारे पुत्र को छोटी सी खरोज भी आ जाए तो उस पुत्र से ज्यादा दुखी उनके माता पिता होते हैं। माता पिता का हृदय अपनी संतानों के प्रति बहुत स्नेही होता है और जब उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो माता पिता बहुत दुखी होते हैं। राजा चित्रकेतु बहुत दुखी हुए। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुक्त कंठो रुरोदह। अंत में राजा चित्रकेतु मुक्त कंठ होकर उन्मुक्त होकर जोर जोर से रोने लगे। यह बात पुत्र देने वाले अंगिरा ऋषि को पता चली। अंगिरा ऋषि ने सोचा कि राजा को के पुत्र का वध हो गया है, मृत्यु हो गई है, इसलिए राजा को सांत्वना देने के लिए जाना चाहिए। तब अंगिरा ऋषि नारद मुनि को लेकर राजा के घर पर पधारे हैं। प्रश्न होता है, क्या अंगिरा ऋषि अकेले नहीं आ सकते थे? अंगिरा ऋषि चित्रकेतु राजा के पास नारद मुनि को साथ में लेकर क्यों आए? क्योंकि नारद मुनि जो है भगवान की भक्ति का प्रचार करने में सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि भगवान की भक्ति का प्रचार बहुत लोग करते हैं, परंतु नारद जी उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और साक्षात भागवत लिखने वाले वेदव्यास जी के गुरु हैं। भागवत के प्रारंभ में ही यह कथा आती है। श्री वेदव्यास जी ने जीवों के कल्याण के लिए बहुत बहुत शास्त्र लिखे। कहते हैं कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वेदव्यास जी ने चार वेद, साम यजुर अथर्ववेद और ऋग्वेद, चार वेद, 17 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण महाभारत, अनेक अनेक शास्त्रों की रचना की है। परंतु आश्चर्य की बात, यह सब कुछ रचना करने के बाद भी यद्यपि जीवों के कल्याण के लिए रचना किए, परंतु स्वयं का कल्याण नहीं हुआ, स्वयं संतुष्ट नहीं हुए, स्वयं सुखी नहीं हो पाए। अपनी रचना से कलयुग के जीवों को सुखी करना चाहते थे, परंतु स्वयं सुखी नहीं हो पाए तो दूसरे लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? वेदव्यास जी बद्रिकाश्रम में बैठे हैं, चिंतित हैं कि मैंने इतने शास्त्र लिखे, उनमें क्या कमी है, किस कमी के कारण मुझे संतुष्टता महसूस नहीं हो रही है, मेरी रचना में क्या कमी है। उस समय वेदव्यास जी के गुरु साक्षात भगवान के मनो अवतार नारद मुनि वहां पर पधारे। नारद मुनि आए, वेदव्यास जी नारद जी को देखकर नम्र भाव से उनके चरणों में झुक गए। दुखी तो थे ही, दुख इस बात का था, इतना इतना कुछ लिखने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। जैसे एक दर्दी, एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर को देखकर अपना सब कुछ डॉक्टर को अर्पण कर देता है, ठीक उसी प्रकार वेदव्यास जी नारद मुनि को सब कुछ दे दिए, अपना हाथ नारद मुनि के चरणों में रखकर प्रार्थना करने लगे कि हे नारद जी, बताइए मेरी रचना में क्या कमी है। तब नारद मुनि वेदव्यास जी को डांटते हुए कहते हैं, क्योंकि एक गुरु अपने शिष्य को डांट सकता है, वास्तव में गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को सत्य से परिचित कराए, ये गुरु का लक्षण है। फिर वह सत्य कटु भी हो तो गुरु वह कटु सत्य भी अपने शिष्य को कहता है। वेदव्यास जी होते हुए भी नारद मुनि ने वेदव्यास जी को डांटा है, ये गुरु का कर्तव्य है। आज के गुरु धन के लोभ में, ऐश्वर्य के लोभ में अपने शिष्य को डांटते नहीं है, देखा गया है शिष्य गलत काम करते हैं, गलत कामों में लगे हैं, परंतु फिर भी उसे रोकते नहीं है। यदि रोक देंगे तो वह शिष्य उसे दान नहीं देगा। कहते हैं चाय कॉफी सब कुछ पी सकते हो, जो करना है करो, इसे गुरु नहीं कहा जाता है। अरे गुरु का तो स्वभाव होता है, एक भक्त बहुत सुंदर लिखते हैं, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सवार दे बाहर मारे चोट। कहते हैं गुरु कुंभार के समान होते हैं और शिष्य कुंभ के समान होते हैं। आपने देखा होगा कुंभार जब मटका बनाता है तो बहुत सुंदर उसे शेप देता है, बहुत सुंदर उसे आकार देता है, उसे घड़ता है, इसलिए उसे उसको घड़ा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को घड़े, सभी ओर से शिक्षा दे, भले शिष्य को कठोर लगे। आपने देखा जब कुंभार घड़ा बनाता है तो बाहर से उसे मारता है, पीटता है, कभी कभी शिष्य को लग सकता है कि मुझे क्यों इतना कड़े कड़ा शब्द कह रहे हैं, परंतु यही गुरु का स्वभाव है। बाहर से भले वे मारे परंतु अंदर से बिल्कुल हाथ सवारते हैं। वे चाहते हैं कि मेरा शिष्य शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे, इसे गुरु कहते हैं। नारद मुनि उसी प्रकार अपने गुरु पद स्वीकार करके वेद व्यास जी को डांटे। केवल नारद जी की बात नहीं, संसार में जितने भी शुद्ध गुरु हैं, वे सभी गुरु अपने शिष्य को डांटते हैं। और भक्तों एक सत्य आपको अंदर की बात कहूं, जब तक गुरु के द्वारा हमें डांट न मिले हमें समझ लेना चाहिए उनकी कृपा हम पर नहीं है। अरे अच्छे शब्द तो सब लोग बोल सकते हैं, परंतु यदि गुरु की डांट मिल जाए समझ लेना चाहिए कि उनकी अद्भुत कृपा हो रही है, अद्भुत कृपा है। केवल नारद जी नहीं, भगवत गीता में चलिए आप। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र थे और मित्र के नाते अर्जुन कृष्ण को बहुत ऑर्डर किया। प्रथम अध्याय में वर्णन है, अर्जुन ऑर्डर करता है कृष्ण को, हे कृष्ण सेनियोर उभयोर मध्य रथम स्थाप में अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। जैसे एक मालिक ड्राइवर को आज्ञा देता है। कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र थे और अर्जुन ने जैसे ही देखा कि विपक्ष में मेरे ही मामा चाचा दादा सब मेरे अपने खड़े हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को कहता है, कृष्ण चलो रथ वापस घर पर ले लो, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भगवान ने मित्रता के नाते कृष्ण ने कहा कि युद्ध कर लो, युद्ध करने के लिए तो आए हैं। अर्जुन ने यहां तक कह दिया, गुरु न हत्वा ही महानुभावान स्वयं भोक्तुम भैक्ष मिह अपीह लोके, हे कृष्ण मैं भीख मांगकर मेरा जीवन बिता लूंगा परंतु मेरे अपने लोगों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कंफ्यूज, अर्जुन विचलित हो गया और अर्जुन को और कोई रास्ता नहीं मिला। देखा कि मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कृपण दुर्बलता के कारण मेरी बुद्धि मति नष्ट हो गई है। तब अर्जुन उस रथ के ऊपर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। हे कृष्ण अब तक तो मैं आपका मित्र था परंतु अब आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं, अभी इस घड़ी से मैं आपको गुरु ग्रहण कर रहा हूं। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण तम मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे उपदेश दो। जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को गुरु बनाया भगवान श्री कृष्ण तुरंत उनके गुरु बने और गुरु बनकर उपदेश देना प्रारंभ किया। और पहला ही उपदेश देते हैं, अशोच्या नन्व शोत्सत्वं प्रज्ञा वादांश वास से गता सुन गता सुंश नानु शोचन्ति पंडिता। प्रथम पहली ही बात भगवान ने गुरु बनकर अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मूर्ख हो, ये गुरु का कर्तव्य है। संसार में मीठी मीठी बात प्रशंसा करना तो सब लोग जानते हैं, मुंह के सामने प्रशंसा करते हैं, आप अच्छे हो ऐसे हो वैसे हो, और पीछे पीछे ईर्ष्या करते हैं। वास्तविक गुरु वह है जो सत्य का निरूपण करे। भगवान ने अर्जुन को कह दिया तुम मूर्ख हो, बड़े बड़े पंडितों जैसी बात करते हो, परंतु जो पंडित होता है वे न तो जीवित के लिए न तो मरे हुए के लिए शोक करता है। तात्पर्य यह है जो गुरु होते हैं वे सत्य का निरूपण करते हैं, भले शिष्य को चोट भी लगे, थोड़ा उपदेश कठिन भी लगे, परंतु फिर भी गुरु उसे देते हैं। भागवत के प्रथम स्कंध के पंचम अध्याय में नारद मुनि वेदव्यास जी को डांटते हैं, वेदव्यास जी आप अपने बुद्धि में बहुत बड़े पंडित मानते हो, क्या आप सोचते हो कि आपने बहुत बड़े ग्रंथ की रचना कर दी? अरे जो लिखना चाहिए वह तो आपने लिखा नहीं, और जिससे लोगों का कल्याण हो सके वे तो आपने लिखा ही नहीं, और केवल आत्मा और ब्रह्म के बारे में आप लिखते गए, निराकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म। वास्तव में आपको क्या बताऊं, जब तक भगवान श्री कृष्ण की लीला रचित शुद्ध श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं होगी तब तक आप भी संतुष्ट नहीं हो सकते हो और संसार के लोग भी सुखी नहीं हो सकते। आपको सुखी होना है और कलयुग के लोगों को सुखी करना चाहते हो, भागवत की रचना करो, क्योंकि भागवत के अलावा कोई सुखी नहीं हो सकता। तब जाकर वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। उस समय नारद जी अपने जीवन का वर्णन करते हैं, अद्भुत चरित्र है नारद। नारद जी कहते हैं कि आज मैं नारद इसलिए बना हूं क्योंकि मैंने भागवत का अध्ययन किया है। नारद मुनि अपनी कथा सुनाते हैं वेदव्यास जी को, मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ था। जन्म होते ही मेरे पिता ने आज्ञा दी कि विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो, परंतु मैं तो भगवान की भक्ति करना चाहता था और मैं जानता था कि भगवान की भक्ति में यह घर गृहस्थी बाधा है। तुमार भजने बाधा, भगवान की भक्ति में बाधा है। मैंने मेरे पिता को ब्रह्मा जी को कह दिया कि भगवान की अमृतमय भक्ति छोड़कर इस विषयों में फंसना, ये तो अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ो मूर्ख, ये तो बड़ा मूर्ख का काम है। मैं विवाह करना नहीं चाहता हूं, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। अब संसार में भी देखा गया है कि जब बालक ब्रह्मचारी बनने की बात करता है तो पिता और माता को बहुत क्रोध आता है। ब्रह्मा जी को जब नारद जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध आया श्राप दे दिया, और श्राप के कारण तुरंत नारद मुनि का दूसरा जन्म देवलोक में हुआ। उपबरहण नाम के देवता बने और एक समय की बात पुष्कर क्षेत्र में, ब्रह्मा जी के क्षेत्र में ये उपबरहण देवता अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। ब्रह्मा जी ने देख लिया पवित्र धाम में ये इतना गंदा कार्य कर रहा है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा जन्म शूद्र कुल में हो जाए, शूद्र जैसा कार्य कर रहे हो शूद्र बन जाओ। तुरंत उपबरहण देवता नारद जी का तीसरा जन्म एक शूद्र के घर पर द्रुमिल गोप, जिसके पिता का नाम द्रुमिल था और माता का नाम कलावती था। जन्म लेते ही नारद मुनि के पिता का अवसान हुआ और माता शूद्र परिवार से थी, इसलिए दूसरों के घर पर बर्तन मांजना, भोजन बनाना यह काम करती थी। नारद मुनि अपना इतिहास वेदव्यास जी को सुनाते हैं कि हे वेदव्यास जी, एक समय की बात, चतुर्मास का समय था जो चल रहा है, चतुर्मास का समय था और बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा हमारे गांव में पधारे और उस महात्माओं की सेवा करने का अवसर मेरी मां को प्राप्त हुआ। मेरी मां बहुत प्रेम से उनके लिए भोजन बनाती और जब तक वह भोजन बनाती तब तक मैं उस महात्माओं के साथ उसके संग में उसकी टोली में बैठा करता और वे लोग निरंतर कृष्ण कथा सुनते रहते थे। तो उनके साथ उनके मुखों से कृष्ण कथा सुनकर, और वे जब भोजन कर लेते थे तो उनका झूठा भोजन खाकर उच्चिष्ट लेपान अनुमोदी तो द्विजे, हे द्विज, हे वेदव्यास जी, उनका उच्चिष्ट खाकर और यह भागवत की कथा सुनकर आज मैं नारद बना हूं। और ऐसा शरीर भगवान ने मुझे दिया है कि जब चाहे तब जिस देश में या जिस लोक में जाना चाहूं वहां जा सकता हूं। तो नारद मुनि भी नारद जी तब बने जब वे भगवान की कथा का श्रवण किए। संसार में लोग नारद जी की का परिचय ही बदल दिए हैं। कुछ लोग प्रवचनों में भी कहते हैं कि नारद का अर्थ है झगड़ा लगाने वाला, परंतु ऐसा नहीं है। नारद का अर्थ बहुत सुंदर है, शास्त्रों में दिया गया है। नार का अर्थ होता है नारायण। आज भी बद्रीनाथ में नर और नारायण दोनों उपस्थित हैं। और इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं, वे बद्रीनाथ में नर और नारायण आज भी सबके पाप को नष्ट कर रहे हैं। तो नारद जी के गुरु है बद्रीनाथ में विराजने वाले भगवान नारायण। तो नारद जी नारायण से ज्ञान लेकर मनुष्य को ददाती, नार अर्थात नारायण से ज्ञान लेकर, और द का अर्थ होता है ददाती, देना। नारायण से ज्ञान लेकर मनुष्य को देते हैं, इसलिए उसे नारद कहा जाता है। और भी संतगण दूसरा अर्थ करते हैं, नर का अर्थ होता है मनुष्य और नार का अर्थ होता है मनुष्य का समूह। जो मनुष्य को भगवत शिक्षा और विद्या प्रदान करते हैं, ददाती देते हैं, उसे नारद कहा जाता है। तो इस प्रकार नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं, वेदव्यास जी के गुरु हैं। केवल वेदव्यास ही नहीं, इस संसार में जितने भी बड़े बड़े भक्त हो चुके हैं, ये सब के गुरु नारद हैं। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन? नारद। ध्रुव महाराज के गुरु कौन? नारद। जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े भक्त हो गए, ये सब के गुरु नारद हैं। और नारद मुनि प्रवचन करने में बहुत एक्सपर्ट है, एक साथ हजारों को भक्त बनाते हैं। भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन है कि दक्ष प्रजापति का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ये दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजा उत्पत्ति करने के लिए नियुक्त किया है। प्रजा उत्पत्ति करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक साथ 10,000 पुत्र को जन्म दिया, एक साथ 10,000 पुत्र को पैदा किया, और 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ, और 10,000 को दक्ष प्रजापति ने तपस्या करने के लिए जंगल में भेजा। देखिए, पहले के जमाने के लोग जानते थे कि जब तक हमारा पुत्र तपस्या न करे, तब तक वे गृहस्थ जीवन ठीक से नहीं बिता सकता। आज सबके गृहस्थ जीवन में दुख और टेंशन के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि तपस्या कोई नहीं करता है। आज के माँ बाप भी पुत्र को तपस्या नहीं सिखाते हैं, सिखाते हैं भोजन कैसे करना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, ये भोग करना तो नहीं भी सिखाएंगे, फिर भी पुत्र सीख जाएंगे, क्योंकि हजारों जन्म से यही करते आए हैं। हजारों जन्मों से यह जीव भोग भोगता आया है, उसे भोग सिखाने की जरूरत नहीं है। आज इस संसार में सभी स्कूल कॉलेज विद्यालय में बस यही सिखाया जाता है, कैसे भोगा जाए, कैसे भोग किया जाए, तपस्या की शिक्षा कहीं नहीं दी जाती, इसीलिए सब लोग दुखी। बताइए, आज किसी को भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि विवाह कैसे करना चाहिए, पुत्र उत्पत्ति कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हजारों जन्म से जीव यही करते आया है। ये भगवत गीता यह सिखाने के लिए प्रवचन होते हैं, क्लास होते हैं, परंतु क्या सिगरेट कैसे पी जाती है ये सिखाने के लिए कहीं क्लास देखे हैं आपने? कभी नहीं। गाली कैसे बोलनी चाहिए कहीं क्लास या स्कूल कॉलेज है? हजारों जन्म से जीव यही करते आया है, यह सब सिखाने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे बालकों को सिखाना है तो त्याग और तपस्या की शिक्षा देनी चाहिए। यदि आज वह त्याग नहीं सीखेगा, आज यदि वह त्याग नहीं सीखता है, तो फिर बड़ा होकर वही हमसे हमारे पास जितना भी धन है सभी धन भोगने की कामना करेगा। आपने देखा दशरथ राजा अपने पुत्रों को कैसा संस्कार देते थे। जब कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र से मांग लिया, दशरथ से मांग लिया दो वरदान, राम को राजा बनाने ही वाले थे, 3.5 घंटा बाकी था। कैकेयी को पता चला, मंत्रा ने उसके कान भरे थे। कोप भवन में बैठी थी, दशरथ जी गए, कैकेयी ने कहा कि वो दो वरदान याद करो जो आपने मुझे स्वर्ग में दिए थे, 200 मांग लो दशरथ राजा। शास्त्र में बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, कभी भी अपनी पत्नी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो, कुछ भी मांग सकती है। उसमें भी बाउंड्री रखनी चाहिए। देखिए दशरथ राजा ने कह दिया जो चाहिए मांग लो, मांग लिया। क्या मांगा? तुम राम को राजा बनाने वाले हो, राम को राजा मत बनाओ, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। दशरथ ने कहा ठीक है। दूसरा कहा कि दूसरा वचन जब कहीं कहीं से मुख से निकला, जब एक गजराज एक हाथी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है, वैसे ही कैकेयी के मुख से वह दूसरा प्रण सुनकर दशरथ राजा भूमि पर गिर गए। क्या था वह? कैकेयी कहती है,
तापस्वेश विशेष उदासी चौदह बरीस राम वनवासी तापस्वेश विशेष उदासी चौदह बरीस राम
कैके ने मांगा के तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए 14 साल के लिए तपस्वियों के वेश में वन में भेज दो। देखिए राजा दशरथ राम के विरह में मर गए, अपने प्राण को त्याग दिए, परंतु अपनी पत्नी को इतना नहीं कह पाए कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, परंतु राम को वन में नहीं भेजूंगा। आज का पुरुष अपनी पत्नी के वश में इतना मजबूर हो जाता है, भगवान तक को वनवास दे दिया, क्या नहीं कह सकते थे? परंतु मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब भगवान श्री रामचंद्र वन में चले गए, भरत जब ननिहाल से अपने घर आए, पता चला कि राम को वनवास दिया है, तुरंत भरत ने कहा कि राम को वनवास किसने दिया है? पता चला कि मेरी मां ने राम को वनवास दिया है, तुरंत कैकेयी के पास जाकर कहा। अरे कैकेयी के पास जाए उनके पहले कैकेयी कहने लगी कि बेटा मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया है, सब कुछ ठीक कर दिया। भरत क्रोध में होकर कहते तुमने ठीक क्या किया, तुमने अयोध्या को जलकर राख कर दिया, तुमने ऐसा कार्य कहा है, तू मेरी मां बनने के योग्य नहीं है। तू कहने लगे और कह दिया कि आज के बाद तू मेरी मां नहीं है, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मर गई मेरी मां, क्योंकि भगवान को मुझसे अलग कर दिया। संसार में देखते हैं कि भगवान से विमुख कराने वाले बहुत लोग हैं, भक्ति में बाधा देने वाले बहुत लोग हैं। उस मां ने कहा कि बेटा भरत तू मुझे ऐसा कह रहा है, तुझे पता नहीं अपनी मां को मां नहीं कहने वाला नरक में जाता है। रामायण में वर्णन है, गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत ने कह दिया एक नहीं हजारों जन्म तक नरक में जाऊंगा, परंतु राम से विमुख करने वाली मेरी मां कभी हो ही नहीं सकती है। तू मेरी मां नहीं है, भगवान से अलग करने वाली मां नहीं होती है। इस संसार में कई मां ऐसी होती हैं, उनके पुत्र भक्ति करना चाहते हैं परंतु करने नहीं देते हैं, वास्तव में वो मां मां नहीं है। और जो पिता अपने पुत्र को भक्ति नहीं करने देते हैं वो पिता पिता नहीं है। गुरु न सस्यात जननी न सस्यात पिता न सस्यात। पंचम स्कंध में भगवान ऋषभदेव ये शिक्षा देते हैं कि जो माँ और जो पिता अपने पुत्र को भजन नहीं करने देते हैं वो माँ माँ नहीं, पिता पिता नहीं। और इसका ज्वलंत प्रमाण प्रहलाद महाराज अपने जीवन में कभी अपने पिता हिरण्यकश्यपु को पिता नहीं कहा, क्योंकि वो पिता है ही नहीं। अरे माता पिता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र को भक्त बनाए। तू मां नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत अब तुम राज्य संभालो, राम तो चले गए हैं, तुम्हारे पिता नहीं रहे हैं, अब राज्य तुम संभालो। सब लोग पूरी प्रजा कहने लगी भरत आप राजा बनो राजा बनो। भरत ने बिल्कुल ना कह दिया। जब बहुत जबरदस्ती करने लगे तब भरत ने इतना ही कहा। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ने इतना ही कहा, मोहि राज हटू दे हुई जब ही रसा रसा तल जाई तब ही। मैं सत्य कहता हूं, इस राजगादी के ऊपर बैठने के लिए केवल राम ही योग्य है, और राम को न बिठाकर तुम मुझे बिठाओगे, मैं सत्य कहता हूं, देखते रहना, ये रसा, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी भी मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी। राम को राजा बनाओ। और उस समय भरत जी कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं राम के पास चित्रकूट में, और यदि आपके घर पर सौभाग्य हो, सौभाग्य का दिन यदि आप लोगों के घर पर हो तो आप भी मेरे साथ चलो। पूरी अयोध्या भरत जी के साथ भगवान राम से मिलने के जा रही है। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि भरत जी हम कैसे ही आएंगे, हमारे बच्चों की परीक्षा चल रही है। जैसे यहां कुछ लोग कहते हैं ना कि बच्चों की स्कूल एक कथा में तो नहीं आ सकते हैं हम लोग। कुछ लोगों ने कहा घर में इतना धन है, कोई चुरा लेकर जाएंगे तो, घर में धन है, बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। तब भरत जी कहते हैं, जर उस संपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सनमुत होत जो राम पद करे न सहज सहाय। इस संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जो भी बाधा बनते हैं, चाहे धन हो, पुत्र हो, संपत्ति हो, उसे जरूर जला देना चाहिए, वे कुछ काम की नहीं है। भगवान की भक्ति में बाधा बनने वाले को जला देना चाहिए। जरूर जाओ उस जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय। हे नाथ, हे जानकी नाथ, भगवान श्री रामचंद्र, संसार में यदि इस शरीर से आपकी सेवा नहीं हो रही तो यह शरीर भी जला देने के लायक, करने के योग्य नहीं। भरत जी गए हैं, जा रहे हैं भगवान राम के पास, सब लोग आगे और पीछे भरत चल रहे हैं, और चलते चलते भी इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। अवध वासियों ने पूछा कि प्रभु अब तो हम राम से मिलने जा रहे हैं, कुछ देर में राम मिल जाएंगे, आप इतना क्यों रो रहे हो। तब भरत इतना ही कहते हैं, क्या बताऊं, भगवान राम को, मेरे बड़े भैया को मिलने जा रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि जिस प्रभु को हम मिलने जा रहे हैं उसको मिलने जाते समय जिस भूमि पर हृदय रखना चाहिए, जिस भूमि पर हृदय रखकर उनके पास जाना चाहिए, वहां पर मैं मेरा पांव रख रहा हूं, यह मुझे दुख हो रहा है। भगवान के धाम में जाते समय हृदय से जाना चाहिए। और जब ये सब लोग भगवान के पास पहुंचे, भरत जी ने कहा कि प्रभु राम भैया आप अयोध्या को संभालो। राम ने कहा भरत आप राजा बनो। तात्पर्य यह है कि उस समय अयोध्या की गादी फुटबॉल की तरह, भगवान कहते हैं आप रखो, भरत कहते हैं आप रखो, ये है संस्कार। आज इस संसार में मेरी है, ये धन मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा चल रहा है, परंतु यदि संस्कार हो, मुझे नहीं चाहिए आप रखो, यह है संस्कार, यह है त्याग, यह है तपस्या। आज इस संसार में सब लोग बस दूसरे से धन ले लेने की ही बात करते हैं, कैसी भी करके ले लूंगा, मेरे भाई की संपत्ति हड़प लूंगा, कैसी भी करके लेने की बात, देने की बात कोई नहीं जानता है, क्योंकि माता पिता ने त्याग सिखाया ही नहीं है। पहले के लोग जानते थे, दक्ष प्रजापति जिसके 10,000 पुत्र थे, एक को भी घर पर नहीं रखा कि एक से प्रेम करेंगे और दूसरे को गुरुकुल में भेजेंगे, नहीं, सब को भेजा। त्याग सिखाने की आवश्यकता है, भोग सिखाने की आवश्यकता नहीं है, भोग से केवल दुख प्रकट होता है, त्याग और तपस्या से सुख मिलता है। दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को भेजा, तपस्या करके जब वापस आ रहे थे, तपस्या करके सबके हृदय पवित्र हो गए, पर नारद मुनि ने देखा कि एक साथ 10,000 का लौट आ रहा है, तुरंत नारायण नारायण करते पहुंच गए वहां पर और कहा कि हे 10 प्रजापति के पुत्रों, कहां जा रहे हो? कहा कि हम तपस्या करने गए थे, अब हम सब लोग घर पर जा रहे हैं, पिताजी ने हम सब के लिए लड़की देख कर रखी है, घर पे जाके विवाह करना है, फिर प्रजा की उत्पत्ति करनी है। नारद मुनि ने कहा अच्छा विवाह करोगे, प्रजा की उत्पत्ति करोगे, सृष्टि करोगे, सृष्टि के बारे में जानते हो, ये सृष्टि कैसी है जानते हो? ये तो हम नहीं जानते हैं। नारद मुनि ने 10 प्रश्न पूछे, केवल 10 मिनट में 10 प्रश्न पूछे, वह 10 प्रश्न सुनकर 10,000 पुत्र भक्त बन गए। सफेद पहनकर आए थे नारद मुनि ने लाल कपड़े पहना दिए, चलो ब्रह्मचारी 10,000 एक साथ 10,000 का लोट। दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये लोग गए तो वापस ही नहीं आए, कहां गए? पता चला नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया। नारद मुनि ऐसे वक्ता है, प्रचार करने में बहुत प्रवर है। इतना नहीं, दक्ष प्रजापति क्योंकि प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए ही जन्म हुआ, दूसरे 1,000 पुत्र को जन्म दिया जिसे हरियश्व कहा जाता है। 1,000 पुत्र को जन्म देकर तपस्या करने अवश्य भेजा क्योंकि जानता था, तपस्या करने भेजा, ये भी तपस्या करके वापस आ रहे थे। नारद मुनि को पता चला, नारद मुनि ही सर्वज्ञ है, सबकी बात जानते हैं, पता चला कि अब 1,000 का लौट आ रहा है, क्या एक दो जन को प्रचार करके भक्त बनाएंगे, एक साथ 1,000 ही बन जाएंगे। गए वहां पर, नारायण नारायण करके पहुंच गए। कहां जा रहे हो? पिताजी ने भेजा था तपस्या करने के लिए, अब विवाह करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा देखो बड़े भाई जो करते हैं वैसे करना चाहिए। बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, वे बुद्धिमान थे। अच्छा नारद जी बड़े भाई ने क्या किया? नारद मुनि ने 10 मिनट 11वें मिनट नहीं लगाई, 10 मिनट में 1,000 पुत्रों को लाल करके भेज दिया। दक्ष प्रजापति क्रोधित, ये साला जितना पैदा करते जा रहा हूं जितना पैदा करते जा रहा हूं सबको ब्रह्मचारी बना रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ये तुम्हारा क्या कर रहा है? वो भी नारद मुनि उनके ही पुत्र थे। मैं यहां पैदा करते जा रहा हूं वो वहां भक्त ब्रह्मचारी बनाते जा रहा है। इस प्रसंग के परपट में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा दक्ष था, दक्ष माने एक्सपर्ट। दक्ष प्रजापति संतान उत्पन्न करने में बहुत एक्सपर्ट था, जैसे इस संसार में सब लोग हैं, और किसी बात में एक्सपर्ट हो या न हो संतान उत्पत्ति करने में एक्सपर्ट है सब लोग। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संसार के लोग भले संतान की उत्पत्ति करने में एक्सपर्ट रहे, हमें नारद मुनि की तरफ बनना चाहिए। संसार के लोग को जितने पुत्र बनाना है बनाइए, हम सबको उसे भक्त बना देते हैं, उनका भी कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा जी को पूछा प्रभु ये सबको ब्रह्मचारी बना रहे क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र उत्पन्न कर रहा है उसे ब्रह्मचारी बना रहा है ना, कन्या को जन्म दो, लड़की को उत्पन्न करो, लड़की तो ब्रह्म लड़की के पास तो ये जाता नहीं है नारद। तब दक्ष प्रजापति ने 16 कन्या को जन्म दिया। तात्पर्य यह है नारद जी प्रचार करने में बहुत श्रेष्ठ हैं, और नारद मुनि एक ऐसे भक्त है जिसका आदर देवता भी करते हैं और उतना ही आदर असुर भी करते हैं। असुर भी बहुत आदर करते हैं नारद मुनि, चाहे फिर हिरण्यकश्यपु हो या कंस हो या रावण हो, सब लोग आदर करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे प्रचार करने में श्रेष्ठ नारद मुनि को साथ में लिए, और अंगिरा जी नारद मुनि को साथ में लेकर राजा चित्रकेतु के घर पर पधारते हैं। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, आइए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। श्री शुक वाच, उचतु मृतको पान्ते पतितं मृतकोपमं
शोका विभूतम राजानम बोधयन्तो सदूक्तिभि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, मृत को पांते पतितम मृत कोपमम। राजा चित्रकेतु मृतक उपांते, उस मरे हुए पुत्र के निकट मृत कोपमम, मरे हुए के समान बैठे थे। बहुत सुंदर भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मरे हुए के बाजू में मरे हुए के समान बैठे थे, इसलिए शोकाभिभूतम राजानम बोधयंतो सदुक्ति भी। मरे हुए के समान बैठे थे क्योंकि बहुत शोक था हृदय में, पुत्र के मरने का शोक था, शोक के कारण वे बैठे हुए थे। श्रीपाद वीर राघव आचार्य कहते हैं, शोकेन अभिभूतम तिरस्कृत विवेकम। शोक के कारण राजा का विवेक तिरस्कृत हो गया, विवेक खो बैठे। यद्यपि उनके घर पर दो महान ऋषि आए हैं, एक अंगिरा ऋषि हैं और एक नारद ऋषि हैं, महान ऋषि आए हैं, परंतु फिर भी शोक के कारण, विवेक नष्ट होने के कारण चित्रकेतु अंगिरा और नारद जी का स्वागत नहीं कर पाए। आइए बैठिए पधारिए, कुछ नहीं, किसी भी प्रकार का स्वागत नहीं कर पाए। तब प्रश्न उठा कि अंगिरा और नारद यहां पर क्यों आए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, बोध यंतो सद उक्ति भी। अंगिरा और नारद बोध कराने के लिए अर्थात उपदेश देने के लिए आए हैं। कैसा उपदेश देने के लिए आए हैं? कहते हैं सत उक्ति भी। सत उक्ति भी का अर्थ होता है सत उक्ति भी यथार्थ हितम प्रिय वाक्य बोधयंतो। ऐसा उपदेश देने के लिए आए हैं जिससे राजा चित्रकेतु का हित हो। वास्तव में राजा चित्रकेतु का हित करने के लिए आए हैं, अपना हित करने के लिए नहीं आए हैं। आज के संसार में कुछ साधु किसी के वहां जाते हैं तो अपना हित करने के लिए जाते हैं, कुछ डोनेशन मिल जाएगा, कुछ भोजन पानी मिल जाएगा, परंतु ये लोग अपना हित करने के लिए नहीं गए थे, राजा का हित करने के लिए गए थे। और हित में भी उनकी वाणी कैसी थी? कहते प्रिय वाक्य बोधयंतु, प्रिय वाणी थी, प्रिय भाषा थी। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को उपदेश करना हो तो उनकी वाणी बहुत मीठी होनी चाहिए, नहीं तो आप कितना भी सत्य बोलो परंतु वाणी यदि कठोर है तो कोई नहीं सुनेगा। यद्यपि वह सत्य है फिर भी कोई नहीं सुनेगा, सत्य बात भी कोई नहीं सुनेगा, परंतु यदि वाणी मीठी हो। कहते हैं प्रिय वाक्य, प्रिय वाणी प्रिय होनी चाहिए, सुष्टु भाषा होनी चाहिए। जैसे राम का प्रसंग आया तो उसमें एक बात बताऊं, भगवान राम को जब वनवास दिया गया और जब वे वनवासियों का वस्त्र पहनने जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मां कौशल्या मिली, और कौशल्या तो राज्य अभिषेक की तैयारी में थी, आरती की थाली हाथ में थी, और कहा कि बेटा तुमने स्नान नहीं किया, जल्दी जल्दी स्नान करो, तुम राजा बनने वाले हो। तब देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र कितने प्रिय प्रिय शब्द बोलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपनी मां को कहते हैं कि मां, पिता दीन मोए कानन राजू। माताजी, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। ऐसा नहीं कहा कि पिता ने मुझे वनवास दे दिया है, तपस्वियों के वेश में चला जाना है। ऐसे कहा, हे माते, ये अयोध्या तो बहुत छोटी है और पिताजी ने देखा कि मैं तो गुणवान हूं, इतना बड़ा होकर इतने छोटे राज्य का राजा कैसे बनूंगा। उन्होंने सोचा कि जंगल का राजा बनाऊंगा, इसलिए पिता दीन मोहे कानन राजू, जंगल का राजा।
इसे प्रिय वाक्य कहते हैं। तो बहुत सुष्टु भाषा में प्रिय वाक्य में सद उक्ति भी कार्य होता है। प्रिय वाक्य में नारद और अंगिरा समझाने के लिए आए थे। वीर राघवाचार्य कहते हैं सद उक्ति भी पुरुष प्रकृति ईश्वर बोधयंतो विवेक उत्पादयंतम। सद उक्ति भी यह लोग सद उक्ति कहने के लिए आए थे। सद उक्ति का अर्थ क्या होता है? ऐसी सद उक्ति कहने के लिए आए थे जिसे विवेक बोध यंतो, जिसे चित्रकेतु राजा को विवेक उत्पन्न हो। और विवेक किससे उत्पन्न होता है? कहते हैं पुरुष प्रकृति और ईश्वर के बारे में यदि कोई जान ले, पुरुष प्रकृति और ईश्वर के बारे में यदि कोई जान ले तो व्यक्ति को संसार का पूरा पूरा ज्ञान हो सकता है। और वे यही ज्ञान देने के लिए आए थे। वास्तव में भगवान की अनंत अनंत शक्तियां हैं। जब तक हम भगवान की शक्ति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक भगवान की महिमा का पता नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं विरार लोकल में, और आपके बाजू में कोई आकर खड़ा रह गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि यह व्यक्ति कितना बड़ा है, छोटा है, क्या है। जब तक उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति की शक्ति या उसके पराक्रम को कोई नहीं बताएगा तब तक उसके प्रति उनकी महिमा और उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार भगवान की शक्ति के बारे में हम जब तक नहीं जानते हैं तब तक भगवान की वैल्यू हम नहीं समझ सकते। तो भगवान की शक्ति का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि हे सनातन, भगवान श्री कृष्ण की अनंत अनंत शक्तियां हैं जिसका कोई अंत नहीं है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं परंतु उस अनंत शक्तियों का दो विभाग है, एक है पराशक्ति और एक है अपराशक्ति। पराशक्ति को ही अंतरंगा शक्ति कहा जाता है और अपराशक्ति को बहिरंगा शक्ति कहा जाता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति दो प्रकार की शक्ति है और उनमें कई प्रकार की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है उस अंतरंगा शक्ति में दो विभाग है, एक है तटस्थ शक्ति और एक है संवित संदिनी और हलादिनी। और अपरा शक्ति जो है वह है भगवान की माया शक्ति, जिस माया से यह जड़ जगत निर्माण होता है और उसी माया से सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण निर्माण होता है। इस प्रकार से यह माया हो, चाहे भगवान का धाम हो, चाहे यह सृष्टि हो, चाहे यह जीव हो, कहते जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। और सबकी बात छोड़ दीजिए, यह जीव अर्थात हम भी कौन है? कहते हैं कृष्णेर तटस्था शक्ति, हम भी भगवान की एक शक्ति है। उस शक्तिमान की हम सब एक शक्तियां हैं। और कौन सी शक्ति है? तटस्था शक्ति, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है हम। तो इस प्रकार से भगवान की अनंत शक्तियां, यह अनंत शक्तियों के बारे में कोई जान ले तो भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकती। तो ऐसी उक्ति, ऐसी सद उक्ति सुनाने के लिए, बोध करने के लिए अंगिरा और नारद वहां पर पधारे। अच्छा, पधार कर क्या किए? कहते हैं ऊच तू, श्लोक में प्रथम शब्द है ऊच तू। ये ऊच तू शब्द जो है द्विवचन में है, यदि एक वचन में होता तो केवल ऊंचू लिखा हुआ होता कि अंगिरा जी ने कहा अंगिरा ऊंचू, अर्थात नारद मुनि ने कहा नारद ऊंचू। परंतु यहां पर ऊच तू दोनों ने एक साथ कहा, इसका अर्थ यह है इसके बाद जो उपदेश आएगा यह उपदेश अंगिरा और नारद दोनों एक साथ बोलेंगे। प्रश्न होता है कि दोनों के मुख से सेम समान शब्द एक साथ कैसे निकले होंगे? उच्चतु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, तो इसका समाधान हो सकता है जैसे भागवत के प्रारंभ में हम सब लोग श्लोक एक साथ में नहीं बोलते हैं, यहां पर बैठे हुए 500-700 लोग एक साथ में श्लोक बोल सकते हैं, तो वे दो लोग साथ में नहीं बोल सकते हैं, दोनों भाई हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, अवश्य बोल सकते हैं। या उच्चतु का दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि एक श्लोक अंगिरा जी बोलते थे, दूसरा नारद मुनि बोलते थे, तीसरा अंगिरा जी, चौथा नारद, वन बाय वन दोनों उपदेश दे रहे थे। चाहे जो भी हो, साथ में बोल रहे हो या वन बाय हो, परंतु दोनों उच्चतु उपदेश देना प्रारंभ किए। अगले श्लोक में क्या कर कह रहे हैं, कहते हैं तत् वाक्यन्येव दर्शयति को अयम इति सप्तभिः। वास्तव में अंगिरा और नारद के द्वारा जो उपदेश देने जा रहे हैं अद्भुत उपदेश है, और हम सबको यह नहीं समझना चाहिए कि यह उपदेश चित्रकेतु के लिए है। केवल चित्रकेतु के लिए नहीं, यह सब हम केतु के लिए भी उपदेश है, क्योंकि हम भी चित्रकेतु की तरह संपत्ति को छूट जाने पर रोते रहते हैं, सबके विरह में रोते हैं, संसार के दुखों से दुखी होकर रोते हैं, सभी दुखों से मुक्त होना है तो यह उपदेश उनके लिए उपाध्याय है, व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। आइए उपदेश कितना सुंदर है यह हम सुनते हैं। को अयम स्यात् तौ राजेन्द्र भवान यमनुशोचति। हे राजेंद्र, हे महाराज, हे राजेंद्र, हे राजाओं में इंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अंगिरा और नारद बोल रहे हैं। भाव यह है कि आप राजेंद्र हो, आप राजा हो। देखिए राजा शोक कर रहा है, कहते हैं कि आप तो राजा हो, राजा होकर इतना शोक कर रहे हो, आपको यह शोक शोभा नहीं दे रहा है। को अयम स्यात्। अब देखिए ज्ञान की बात कर रहे हैं। हे राजन, हे चित्रकेतु, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वह तुम्हारा कौन था? पुरा सृष्ट तुम च अस्य कतम, पहले जन्म में तुम इसके कौन थे? इदानीं इस समय तुम इसके कौन हो? अतः परम, इसके बाद तुम कौन बनोगे? बहुत सुंदर। इस संसार में हम जिसे प्रेम करते हैं, जिसके प्रति स्नेह रखते हैं, एक बार सोच लेना चाहिए कि इसके पहले वह मेरा कौन था, मैं उनका क्या था, मरने के बाद मैं उसका कौन हूं। इसका अर्थ यह है कि हे चित्रकेतु, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, यदि तुम आपके पुत्र के शरीर के लिए शोक कर रहे हो तो शरीर तो आपके सामने है, पुत्र के विरह में ही रो रहे हो ना, पुत्र के विरह में रो रहे हो तो पुत्र तो सामने लेटा हुआ है, क्यों रो रहे हो? वे तो कहीं चला नहीं गया, अदृश्य तो नहीं हो गया। और यदि तुम कहते हो मैं पुत्र के लिए नहीं रो रहा हूं, उसकी आत्मा के लिए रो रहा हूं, उस पुत्र में से आत्मा चली गई उसके लिए रो रहा हूं, तो आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता है। शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर तुम्हारे सामने है, रोने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा का तो न जाए ते कभी नाश नहीं होता है। अतः हे चित्रकेतु, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कोई किसी के माता पिता पुत्र चाचा ये सब कल्पित है, वास्तव में कृष्ण ही भगवान ही हमारे माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, वही सब कुछ। इसे तुम गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सब लोग इस श्लोक को जानते हैं, परंतु मानते कितने लोग हैं बताइए? त्वमेव माता, भगवान को कहते हैं आप ही मेरी माता हो। त्वमेव पिता, त्वम एव, एवं शब्द का अर्थ होता है आप ही, अर्थात आपके अलावा कोई नहीं। आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आपके अलावा कोई नहीं। तो मैं वह बंधु, आप ही मेरे बंधु हो, आपके अलावा मेरा बंधु कोई नहीं। च सखा तुम्हें वो सब कुछ आप ही हो। कृष्ण ही सबके पुत्र है, सबके पिता है, माता धाता सब कुछ वे ही है। शोक यदि करना है तो उनके लिए करना चाहिए कि वास्तव में जो हमारा है उसको तो हम याद नहीं कर रहे हैं, जो हमारा है ही नहीं उनके लिए, उनको हम याद करते रहते हैं। बहुत सुंदर प्रथम श्लोक में कह दिए कि तुम वास्तव में शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। शरीर के लिए शोक कर रहे हो तो शरीर तुम्हारे सामने रखो शोकेश में, और आत्मा के लिए शोक कर रहे हो तो आत्मा को तो कभी आपने देखा नहीं, प्रेम कहां से उत्पन्न हुआ? मान लीजिए चित्र केतु उस बालक के शरीर के लिए रो रहा है तो शरीर उनके पास है, और यदि कहे कि शरीर के लिए नहीं रो रहा हूं, शरीर में से आत्मा निकल गई उसके लिए रो रहा हूं, तो आत्मा तो कभी उसने देखी नहीं, आत्मा को कभी उसने छुआ नहीं, आत्मा का न तो कभी उसने दर्शन किया, तो प्रेम कहां से प्रकट हुआ? जिस व्यक्ति को कभी देखा नहीं, छुआ नहीं, स्पर्श नहीं कहा, तो कहां से प्रेम? ये केवल माया के अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रकट बात। कहां का प्रेम है संसार में? जड़ शरीर के साथ प्रेम तो शरीर तो कहीं जाने वाला नहीं है। कितना भी प्रेमी हो, मान लीजिए एक पत्नी पति से कितना भी प्रेम करती हो, जैसे ही शरीर आत्मा निकल जाती है तो शरीर को जला देते हैं, और थोड़ी भी देर हो गई तो जल्दी करो, बदबू आ रही है जल्दी करो, शरीर को जला देते हैं। तो फिर रो किस लिए रहे हैं? रोने वाला ही कहता है शरीर को जला दो। यदि प्रेमी है तो रखो शरीर को अपने घर पर, सो उनके बाजू में। प्रेम 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 कर रहे हो तो रखो बाजू में, किसके लिए रो रहे हैं यही नहीं पता है। और यदि कोई बड़ी बड़ी बात करने लगे, नहीं शरीर के लिए नहीं रो रहा हूं, आत्मा के लिए रो रहा हूं, तो पहली बात, आत्मा कभी मरता नहीं है, क्यों रो रहे हो? दूसरी बात कि आत्मा कभी तुमको मिला नहीं, आत्मा कभी देखा नहीं, तो क्यों रो रहे हो? ये रोना, स्नेह, प्रेम संबंध एकमात्र माया है बस। विजय ध्वज जी कहते हैं, ननु तरही इदम सर्वम माया कल्पितम अस्तित्व इति तत्र आह यथा इति। इस बात को और दृढ़ करते हुए कहते हैं, यथा प्रयान्ति संयान्ति स्त्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे समुद्र का किनारा तो आप लोगों ने देखा होगा, और यहां के लोग तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि जू बीच बाजू में ही है, और नहीं देखा होगा तो आज के इंटरवल में देख कर आइएगा। कहते हैं यथा प्रयान्ति संयान्ति स्त्रोतो वेगेन बालुका, जैसे समुद्र होता है, समुद्र के किनारे समुद्र के पानी से कुछ बालू किनारे पर आती है, समुद्र ही उस बालू को किनारे पर लाता है और समुद्र का पानी उस बालू को अंदर लेकर जाता है। समुद्र कभी कभी उस बालू को किनारे पर छोड़ता है, कभी कभी बालू मिलती है तो कभी कभी बालू को लेकर अंदर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार काल के वेग में इस संसार में कुछ लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। तो मिलना बिछड़ना ये तो चलता रहता है, ये तो एक नेचुरल वस्तु है, उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्या आप होटल में नहीं जाते हो? सब लोग जाते होंगे होटल में, जाते हो होटल के टेबल के ऊपर बैठते हो, कई लोग होटल में आते हैं और होटल से 10 लोग खा पी कर चले जाए तो क्या हम रोने लगते हैं कि अरे बाप रे भाई रे, हमारे साथ प्रसाद ले रहा था, भोजन कर रहा था, वे चले जा रहा है? होटल में भी सब लोग मिलते हैं और मिलने के बाद बिछड़ते हैं। होटल का दर्शन आचार्य इसलिए दे रहे हैं, ये श्रीपाद श्रीधर स्वामी होटल का दर्शन दे रहे हैं। होटल का दर्शन इसलिए कि जब हम होटल में जाते हैं तो हमारे साथ कई लोग होटल में आते हैं, हमें नहीं पता ये किस कौन से घर से किस एरिया से आया है, और हमें यह भी नहीं पता कि वह कहां जाने वाला है, कहां से आया है, कहां जाने वाला, कुछ नहीं पता है। फिर भी होटल में एक साथ भोजन करते हैं, तो होटल में भोजन करने के बाद क्या रोने लगते हैं सब लोग? क्या आए रे, अब तो आप चले जाओगे, मैं तो मर गई आपके विरह में। नहीं, तो होटल में एक घंटे के लिए मिले, जीवन में 10 साल के लिए या 100 साल के मिलकर कोई बिछड़ता है तो उन्हें रोने की क्या आवश्यकता है? दृष्टा दृष्टांत आचार्य गण देते हैं, जैसे प्याव या बस या ट्रेन में कई लोग जाते हैं एक साथ, रिजर्वेशन कराते हैं, जाते हैं और डिब्बे में एक साथ भोजन करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। किसी को जाना है भावनगर और 10-15 लोग बड़ौदा उतर गए तो क्या भावनगर वाले रोने लगते हैं? अरे ये तो पहले ही उतर गए, ये तो पहले ही चले गए, अब रो, माथा पीटो, छाती पीटो, कभी नहीं। क्योंकि ये संसार का नियम, उल्टा हम सब लोग तो जल्दी उतरना चाहते हैं, हम सोचते हैं ये तो इसका तो स्टॉप आ गया, हमारा कब आएगा। ट्रेन में ये हमारा अनुभव है, ट्रेन से हम जाते हैं तो जो पहले उतर गए हैं हम लोग सोचते हैं हम भी उतर गए तो कितना अच्छा होगा। भक्तों, उसी प्रकार यह संसार रूपी एक ट्रेन है, इस ट्रेन में हम सब लोग आपस में मिले हैं और सब लोग अपने अपने स्टॉप पर उतरने वाले हैं। तो कोई व्यक्ति अपने स्टॉप पर उतर जाए तो क्या हमें रोना चाहिए? परंतु यह अद्भुत संसार की ट्रेन है। साधारण ट्रेन में तो सब लोग जल्दी उतरना चाहते हैं, कब गंतव्य स्थान आए, कब स्टॉप आए और उतरे। परंतु यह संसार रूपी ट्रेन ऐसी है कि कोई उतरना ही नहीं चाहता है, ट्रेन में ही बैठा रहना चाहता है व्यक्ति, कोई अपने मूल डेस्टिनेशन प्लेस पर जाना ही नहीं चाहता। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति को भावनगर जाना हो और यहां से ट्रेन में बैठ जाए, परंतु भावनगर, अब उसका लक्ष्य भावनगर उतरना ही नहीं है, ट्रेन में ही बैठे रहना है, क्या वो सुखी हो पाएगा? जब तक वह डेस्टिनेशन प्लेस पर, गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो ट्रेन में दुखी होता रहेगा। संसार रूपी ट्रेन से कोई उतरना नहीं चाहते, सब लोग इसी ट्रेन में, इसी धमाल में बैठा रहना चाहते हैं। भागवत में भद्र सवाजी भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, अहो विचित्रम भगवत चेष्टितम, हे भगवत, हे भगवान, आपकी माया अद्भुत है। व्यक्ति देखता है कि इस ट्रेन में, संसार रूपी ट्रेन में दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि, देवी का आदि, भौतिक आदि, आध्यात्मिक सभी दुखों से दुखी हैं, परंतु रजो दिका कर्मो परा दुखेच सुख मानी न। ये व्यक्ति दुखी होने के बाद भी दुख में भी सुख बुद्धि कर लेता है, अब क्या किया जाए? आपकी अद्भुत माया है और ध्वंतम जनोयम विषम न पश्यति, और आपकी माया में फंसकर संसार के दुखाले जगत को वे देख नहीं सकता। लोग देखते हैं कि इस ट्रेन से सब लोग उतर रहे हैं, हमें भी एक दिन उतरना है, हमें भी मरना है, परंतु पश्यन अपि न पश्यति, देखने के बाद भी लोग नहीं देखते हैं। जायन असज्जरि विकर्म सेवितम निर्हित पुत्रम पितरम जिजीवति, व्यक्ति देखता है कि मेरे पिता मर गए, मेरे पुत्र मर गए, परंतु कभी सोचता नहीं है कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना है। अद्भुत माया है संसार। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, मैं बोरीवली में रहता हूं और प्रतिदिन मंदिर जाने के लिए मीरा रोड जाना पड़ता है। तो जब मीरा रोड जाते हैं हम लोग हाईवे से, तो हाईवे के अंदर 2 कसाई खाने मिलते हैं, बकरे को काटने की दुकान। और उस दिन रविवार के दिन, क्या पता लोग ज्यादा मांस खाते होंगे, तो क्वांटिटी में होता है। रविवार के दिन 10-15 बकरे को वहां पर बांध कर रखते हैं बाहर, आपने देखा होगा। तो मैं तो बहुत सोचता हूं, क्योंकि आचार्य गण बकरे का उदाहरण ही देते हैं, देखता हूं कि वो जो कसाई होता है 15 बकरे के बीच में आता है और देखता है किसको पकड़ूं। मैंने ये भी देखा है, बकरे के कान को पकड़ता है और लेकर अंदर चला जाता है, बाकी के जो 15 बकरे खड़े हैं वे जानते हैं कि इस बकरे को अंदर लेकर जाकर काटना है। देख, वहां दिख भी रहा है, यहां दुकान है और दुकान के सामने सबको बांध कर रखा है। वे अपने आंख से देख भी रहे हैं कि वो लटक रहा है उल्टा मरा हुआ, और एक एक करके लाइन से सबको लेकर जाना है। लेकिन वो बकरा थोड़ा भी भागने की कोशिश नहीं कर सकता, देख रहा है कि एक एक करके पकड़कर काट रहे हैं, काट कर लटका रहे हैं और बेच रहे हैं, सब कुछ अपनी आंख से देख रहे हैं, फिर भी वह घास खाने में मदमस्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम भी उस बोके के समान हैं, देख रहे हैं कि सब लोग मर रहे हैं, बिल्कुल लाइन से सब लोग जा रहे हैं और कुछ तो लाइन ब्रेक करके भी जा रहे हैं, पहले से मर रहे हैं, परंतु जीव कभी इसकी तैयारी में नहीं रहता है कि मैं भी जाऊंगा। अरे वे तो चार पैर वाला बकरा बेचारा भाग नहीं सकता है, परंतु ये दो पैर वाला बकरा मृत्यु से बच सकता है यदि प्रयास करे तो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन दो पैर ही इसे बचने के लिए दिया गया है, और जितने भी योनि है ये सब बचने के लिए नहीं है, परंतु ये मनुष्य जीवन हमें मरने से बचा सकता है। तो मरना तो सबको है, परंतु उस मरने से बचने के लिए भजन कर लेना चाहिए। इसलिए हमारे एक भक्त बहुत सुंदर गाते हैं,
कठण चोट जे काल नी मरण मोटे रोमा, कहींक राजा ने कहींक राजिया, हे छोड़ी चाला छे संसार, हे ते हरि नो रस पीए, हे ते हरि नो रस पीए, कारणी रे मरण मोटे रोमाल, कहीं राजा ने कहीं राजिया रे, मिली चाला संसार, हित हरि नो रस पीजिए,
बाहु दश वदन आद नीतो बचे न काल बलिते,
इस संसार में राजा नहीं, राजेश्वर नहीं। कहते हैं दस दस सिर वाले आ गए, हजार हजार भुजा वाले आ गए, परंतु मरने से नहीं बच सके। बहुत धन एकत्रित किया, बहुत बंगले बनाए, परंतु एक ना एक दिन सब लोग चले गए। जितना भी धन था, गाड़ी बंगला सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह गया, और वे स्वयं इस संसार को छोड़कर चले गए। कहते हैं कोना छोरू ने कोना वाचरू ने कोना माने बा, अंत काले जाऊं तारे एक लूं हे साथ पुण्य ने पा,
इते हरी न रस पीजिए।
संसार में कोई नहीं रहने वाला, इस संसार में देखा गया है जब किसी के सगे संबंधी चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसके पीछे सब लोग रोते रहते हैं। परंतु ये भक्त बहुत सुंदर कहते हैं कि संसार में किसी के मर जाने के पीछे जो लोग रो रहे हैं, रोने वाले भी इतने जाने वाले हैं। जिसके लिए रो रहे हैं वे भी नहीं रहने वाला है, जो रो रहा है वह भी नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए रोना नहीं चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए, हरे हरे हरि का नाम लेते रहना चाहिए।
जन्म याते तो सर्वे सर्वे जवान कायम नती रहे ना, मरना रान रोनार नथी रहे ना, हे ते हरी नो रस पीजिए। जन्मते तो सर बेजवाना कायम नथी रहे नार, मरनारा ने तमे शुरू रोनार नथी रहे नार, हे ते हरी नो रस पीजिए।
तो एक ना एक दिन सबको मरना है, तो मरने से पहले मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए, कम से कम इससे बचने का प्रयास होना चाहिए। इस संसार में सब लोग यथा प्रयाति संयान्ति स्त्रोतो वेगेन बालुका, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलना बिछड़ना चलता रहता है, कभी इससे दुखी नहीं होना चाहिए। एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं, यदि किसी के मिलना और बिछड़ने से आपको दुख हो रहा है तो आप ऐसा संबंध जोड़ो जहां कभी बिछड़ना ना हो, और मरने का कष्ट होता है तो ऐसा स्थान ढूंढो जहां पर मरना ना हो। यदि इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतने कुछ उपदेश सुनने के बाद भी ये उपदेश आपके दिमाग में फिट नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, प्रेम करना है तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करो कि कभी वे हमसे बिछड़े नहीं, और मरने से बचना है तो ऐसा स्थान प्राप्त करो जिस स्थान में जाकर हम मरे नहीं। तालियां मत बजाइए, ऐसा स्थान कहां ढूंढेंगे आप, पार्ला में, बोरीवली में, अंधेरी में। एक स्थान ऐसा है जहां पर जाने से कभी कोई मर नहीं सकता है, अमर हो जाता है, और एक संबंध ऐसा है जो संबंध जोड़ने पर वे कभी हमसे बिछड़ता नहीं। जानना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि एक स्थान ऐसा है जहां जाने पर कभी मरना नहीं, और वह स्थान है भगवान का अपना धाम, उनका नाम है वैकुंठ। यदि आप वैकुंठ में चले जाते हो तो वहां पर कभी किसी को मरना नहीं होता है, वहां कभी शोक नहीं होता है,
वैकुंठ में कहीं शमशान नहीं है, क्योंकि मरने वालों के लिए शमशान होता है। और एक संबंध ऐसा है, यदि आप चाहोगे भी संबंध को छोड़ दो तो भी वह संबंध छूटेगा नहीं, एक बार जोड़ लिया तो फिर वह छूटता नहीं है। और वे संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़। जीव का वास्तविक संबंध एकमात्र भगवान कृष्ण के साथ हो सकता है, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ हो सकता है। इस संसार में दुख इसीलिए है क्योंकि आत्मा जो है चिन्मय है, और ये चिन्मय आत्मा जड़ वस्तु के साथ प्रेम करने लगती है, यही है दुख का कारण। यह अनित्य जीव नित्य वस्तु से प्रेम करने लगता है, यही है दुख। अनित्य जीव नित्य जीव नित्य वस्तु के साथ प्रेम करने लगे तो वे सुखी हो सकता है। जीव नित्य है, जीव का कभी नाश नहीं है, परंतु नित्य जीव नाश होने वाली नाशवंत वस्तु के साथ प्रेम करता है, इसलिए दुख है। नित्य जीव यदि चिन्मय वस्तु के साथ प्रेम करने लगे तो वे सुखी हो सकते हैं, और चिन्मय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उसे परब्रह्म कहा जाता है। और सत चित आनंद जिनका स्वरूप है, ऐसे भगवान के साथ यदि प्रेम करोगे तो वे भगवान कभी ही, आप भले उसको छोड़ने का प्रयास करो परंतु वह आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक आचार्य रूप गोस्वामी पद्यावली नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि संसार के संबंध में ही पड़े रहना है, अपनी पत्नी और बच्चों के संबंध में ही पड़े रहना है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करते रहना है, तो कभी वृंदावन मत जाना, भूल से भी वृंदावन मत जाना, और यदि वृंदावन भी चले गए तो यमुना के किनारे मत जाना, और यदि यमुना के किनारे भी चले गए तो भूल से भी उस बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण के सामने मत देखना। यदि उसको देख लिया तो संसार में जीना मरना हराम हो जाएगा, पत्नी और बच्चों के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति संबंध जो है अद्भुत संबंध है। वास्तव में संसार के लोग क्या संबंध बनाकर रख सकते हैं? भगवान संबंध निभाना तो कृष्ण जानते हैं, हम क्या जानते हैं? संसार के किसी भी लोग से आप मित्रता करो, किस हद तक मित्रता निभाते हैं? आज तो देखा गया है, जब सुख का समय होता है तब साथ रहते हैं, और दुख के समय में इतने दूर चले जाते हैं फोन भी नहीं उठाते हैं। ये है आज के मित्र, किसके साथ मित्रता? मित्रता का संबंध केवल कृष्ण के साथ, और कृष्ण जानते हैं किस प्रकार मित्रता निभानी चाहिए। भागवत दशम स्कंद और 80वां अध्याय कृष्ण और सुदामा की कथा सब लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सुदामा के प्रति अपनी मित्रता निभाए हैं? मित्रता भगवान करते एक पलड़े में दुनिया की अमीरी, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ लक्ष्मी, सहस्त्र करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिसकी सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं, ऐसे कृष्ण। और उनका मित्र कौन? जिसको रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन के भी वांदे हैं, ऐसे सुदामा। लेकिन फिर भी भगवान जब मित्रता निभाते हैं तो अद्भुत मित्रता। भगवान श्री कृष्ण ने उस सुदामा को अपने जैसी द्वारका नगरी ही प्रदान कर दी। कल्पना कीजिए, आज का कोई भी मित्र, करोड़पति व्यक्ति मित्र के पास जाए तो क्या अपने जैसा धन किसी को दे सकता है? 50 देगा, 100 देगा या 1000 देगा? अपने पास जितना है उतना कोई नहीं दे सकता है, भगवान दिए। भागवत में वर्णन है, भगवान अपने जैसी द्वारका जैसा ऐश्वर्य देने के बाद भी आंखों से आंसू नहीं सूख रहा था, रो रहे थे। करुणा का सागर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा का सागर रो पड़ा, आंखों से अजस अविरत अश्रु धारा सुदामा को देख। सब कुछ देने के बाद भी वे रो रहे थे और यही महसूस कर रहे थे कि अरे बाप रे, मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया, यद्यपि सब कुछ दे चुके थे, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को सब कुछ दे चुके थे, फिर भी मन में यही ग्लानी है कि मैंने कुछ नहीं दिया। और आज संसार के मित्र 50-100 रुपए क्या देते हैं, सोचते हैं सब कुछ दे दिया, इसको खरीद लिया, इसको जैसे उसको खरीद लिया हो ऐसे रोक करते। क्या ये मित्रता है? मित्रता निभाना भगवान जानते हैं, इसलिए कृष्ण के साथ मित्रता कीजिए। मित्रता का संबंध कृष्ण, पति पत्नी का संबंध कृष्ण निभाते हैं, सखाओं का संबंध कृष्ण निभाते हैं, कृष्ण संबंध निभाना जानते हैं, इसलिए प्रेम करने योग्य कृष्ण है। तो वह संत बहुत सुंदर कहते हैं, फिर भी शोक और मोह हृदय में है, मरने से बचना चाहते हैं तो वैकुंठ प्राप्त करो, और संबंध रखना चाहते हो तो कृष्ण के साथ संबंध जोड़ो, कृष्ण ही हमारे सब कुछ। जब इस प्रकार से चित्रकेतु को अंगिरा जी और नारद मुनि ने उपदेश दिया, तब चित्रकेतु अभी भी शोक में है, रोते रोते बोल रहे हैं कि ठीक है, परंतु फिर भी दुख तो लग ही रहा है। संसार में होता है, बहुत कुछ प्रवचन सुनाने के बाद भी लोग दुखी के दुखी रहते हैं। ठीक है, परंतु फिर भी दुख तो लग ही रहा है, क्योंकि बहुत परिश्रम से यह पुत्र मिला था, बहुत भाग्य से और परिश्रम के बाद यह पुत्र मिला था और बिछड़ गया, इसलिए दुख तो बहुत हो रहा है, क्या करो। कह रहे हैं, यथा दाना सु वै दाना भवन्ति न भवन्ति च एव भूतानि भूतेषु चोदिता निष्मायया। जब चित्रकेतु ने कहा कि बहुत मेहनत के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ और वह चला गया, इसलिए बहुत दुख हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है, तब नारद जी और अंगिरा जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। यथा दाना सु वै दाना, धान का अर्थ होता है जैसे खेत में धान गेहूं चावल इत्यादि उत्पन्न होता है, धान के खेत में देखा गया है कि एक बीज से कई सारे बीज प्रकट होते हैं, एक बीज से कई सारे बीज प्रकट होते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। दान यथा दाना सु वै दाना भवन्ति न भवन्ति च, कभी कभी देखा गया है कि किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके बीज रोपते हैं, और न भवन्ति, कभी कभी उस बीज से फसल नहीं होती है, और कभी कभी फसल हो जाती है तो होकर फिर नष्ट हो जाती है। खेत में बीज से कभी कभी फसल नहीं होती है, और कभी कभी फसल होती है तो होकर नष्ट हो जाती है, तो क्या बीज रोने लगते हैं? अरे साधारण प्रकृति या पेड़ बीज भी नहीं रोते हैं, तो तुम तो मनुष्य बुद्धि वाले हो, तुम क्यों रो रहे हो? एव भूतानि भूतेषु चोदितानि निष्मायया। ठीक उसी प्रकार, एवं उसी प्रकार इस संसार में देखा गया है कि कभी कभी किसी माता पिता को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होने पर किसी को रोना नहीं चाहिए, जैसे चित्रकेतु रो रहा था। चित्रकेतु रोते रोते कह रहा था कि पुत्र नहीं है तो मैं नरक में चला जाऊंगा, मुझे नरक से कौन बचाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, पुत्र नहीं होने पर माता पिता नरक में जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। हाँ ये बात जरूर है, यदि पुत्र हो तो माता पिता को नरक से बचा सकते हैं, थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, परंतु पुत्र नहीं होने पर नरक में चले जाएंगे ऐसा नहीं है। अरे भागवत में तो यहां तक लिखा है, राजा अंग अपने मुख से कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने पिछले जन्म में भगवान की बहुत भक्ति की होगी, जो लोग पूर्व जन्म में भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, उसे इस जन्म में पुत्र नहीं होते हैं, क्योंकि पुत्र दुख के अलावा और कुछ नहीं देते हैं। साक्षात भागवत में राजा अंग इस बात को कहते हैं, क्योंकि उनका पुत्र हुआ था वैण। ऐसा नहीं है पुत्र नहीं होने पर नरक में जाते हैं, जो भी होता है कहते हैं चोदितान ईश मायया। विजय ध्वज जी कहते हैं ईश मायया नारायण इच्छया। ईश माया का अर्थ होता है भगवान नारायण की इच्छा से। इस संसार में भी किसी को कितना पुत्र होना, कब होना, ये सब नारायण की इच्छा है। देखा गया है कुछ लोग पुत्र नहीं चाहते फिर भी चार पांच पुत्र हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी, और कुछ लोग बहुत चाहते फिर भी एक भी पुत्र नहीं होता है, ये क्या है? भगवान की इच्छा है। कुछ लोग बहुत गर्व में होते हैं कि मैंने पुत्र उत्पन्न किया, आपने क्या खाक किया है? पुत्र गर्भ में जब है तो उसे दूध कौन देता है? आप देने गए थे, उसे सांस कौन देता है, भोजन कौन देता है? अरे डॉक्टर भी नहीं जान पाए आज तक कि मां के गर्भ में पुत्र को हवा पानी सांस कैसे मिलता है, और कहते हैं कि हमने पैदा किया। भगवान की ईश माया, कहते हैं भगवान नारायण की इच्छा से संसार के में सबको संतान होती है और संतान नहीं होती है और होकर चली जाती है, सब भगवान की इच्छा है। तो हमें कभी भी इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है। कुछ लोग सोचते हैं ये मेरी पत्नी है, कुछ लोग सोचते हैं ये मेरा पुत्र है, सब अभिमान है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को उद्धव गीता सुनाते हुए पुरुरवा महाराज की कथा कहते हैं, और पुरुरवा महाराज एल गीत में एक बहुत सुंदर एक पद गाते हैं। महाराज पुरुरवा कहते हैं कि संसार में सब लोग कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, परंतु आज तक पता नहीं चला कि मैं किसका हूं। बहुत सुंदर श्लोक दिए हैं एल गीत जिसका नाम है, कहते हैं पित्रो किम सुनु भार्यायाम, इस संसार में पिता ये कहते हैं कि ये पुत्र मेरा है, पिता कहते हैं कि ये मेरा है, मां कहती है ये मेरा है, पत्नी कहती है कि ये मेरा है, पुत्र कहते हैं कि ये मेरा है, जिस ऑफिस में काम करते हैं वे मालिक कहते हैं ये मेरा नौकर है, देश की सरकार कहती है कि ये मेरी प्रजा, ये मेरा है, शमशान की अग्नि की चिता कहती है कि ये मेरा है, जमीन के पृथ्वी के कीड़े मकोड़े कहते हैं कि ये मेरा है क्योंकि मरकर वहां राख होने वाला है, गिद्ध कहते हैं कि ये मेरा है, आज तक पता नहीं चला कि मैं किसका हूं। संसार में दुख और झगड़ा नहीं तो क्या चल रहा है? बहुत बड़ा झगड़ा है, पिता सोचते हैं मेरा है, पत्नी सोचते हैं मेरा, माता पिता अपना अधिकार बनाते हैं तो पत्नी यहां उसको खींचती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे एक व्यक्ति को 10 पत्नी एक साथ कोई हाथ कान नाक पकड़कर अपनी अपनी ओर खींचे, वैसे जीव बेचारा परेशान होते रहता है, सब लोग अपना अधिकार जमा कर बैठे हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है यह? किमात्मनम किम सुदाम इति यो नावसीयत, निश्चित करना बहुत मुश्किल है, परंतु यह अकाट्य सिद्धांत वेदों का तथ्य यह है कि वास्तव में यह शरीर भगवान का है, भगवान का यह शरीर है, और भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि पर ऐलान करते हैं, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है, और यह शरीर इस प्रकृति से ही बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इससे यह शरीर का निर्माण हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानाम, भगवान ही सभी जीवों के बनाने वाले हैं, भगवान ही सभी जीवों के आश्रय है, वास्तव में यह शरीर भगवान का है, इसलिए इस शरीर के द्वारा, यह शरीर भगवान का है इसलिए इस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा होनी चाहिए। अरे चित्रकेतु रो मत, जिसका यह शरीर है उनके लिए रो, इस संसार में देखा गया है व्यक्ति अन्य अन्य लोगों के लिए रोते रहते हैं, यह निश्चित है कि यह शरीर भगवान का है, जिसका यह शरीर है, जिसने यह शरीर दिया है उनकी ओर एक मिनट भी नहीं देखते हैं, और अन्य संसार के सामने रात दिन देखा करते हैं। भगवान ने इतना सुंदर शरीर हमें दिया है जिसकी कोई अमूल्य शरीर है, शरीर की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। वे कहते हैं मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप अपना एक हाथ दे दो 1 करोड़ रुपया दूंगा, कौन देने के लिए तैयार है? दूसरा दोनों हाथ दे दो 2 करोड़ देंगे, आप अपनी 2 आंख दे दो 4 करोड़ रुपया देंगे, आप अपना एक सिर काट कर दे दो 1 अरब रुपए देंगे, कौन देगा? भक्तों इसका अर्थ हुआ कि यह शरीर की वैल्यू यह सब धन से भी ज्यादा है, इतना अमूल्य शरीर भगवान ने हमको प्रदान किया है, परंतु भगवान को थैंक यू कहने का भी समय हमारे पास नहीं है। अब देखिए, हम अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड मानते हैं, हम अपने आप को इतने प्रगतिशील व्यक्ति मानते हैं, हम अपने आप को बहुत शरीफ मानते हैं और शरीफाई भी दिखाते हैं। ट्रेन से जाते हैं, किसी से नंबर लिखना हुआ तो पेन लेते हैं, पेन लेकर नंबर लिखकर जब वापस लौटाते हैं तो थैंक यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े आभारी हैं, थैंक यू कहते हैं। अरे एक छोटी सी पेन से नंबर लिखने वाले को हम थैंक यू कहते हैं तो जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, क्या उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है? कहना चाहिए। शरीर भी उसने दिया और शरीर चलाने के लिए वस्तु भी उसने दी, क्योंकि शरीर देने के बाद हवा पानी प्रकाश नहीं दिया होता तो ये शरीर कैसे चलता? सर्जन भी वे करते हैं, पालन भी वे करते हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू कहने का समय हमारे पास नहीं। कहना चाहिए, नहीं तो कृतज्ञता का दोष लगता है। कम से कम यह सोचकर तो भगवान के चरणों में जाना चाहिए, प्रभु आपने इतना सुंदर शरीर हमें दिया है, हम आपको थैंक यू कहते हैं, प्रणाम प्रार्थना। और भगवान का थैंक यू हमारी तरह नहीं है, भगवान का थैंक यू कुछ अलग है। क्या है? हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो यह शरीर है चित्रकेतु, आपका नहीं है, यह शरीर भगवान का है, भगवान ही इस शरीर को देते हैं, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। फिर भी चित्रकेतु का शोक नहीं जा रहा। तब अंगिरा और नारद कहते हैं, आपको शोक करना ही है तो शोक करना ही है तो पुत्र के लिए भी करो और जितने भी पत्नी बच्चे जितने भी पत्नियां हैं सबके लिए करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को कहते हैं, शोचनीयश्चेत न केवलम मृत पुत्र एव, शोक करना ही है तो न केवलम मृत पुत्र एव, केवल मरे हुए के लिए शोक मत करो, अपितु दाराम अति स्वजन आदय सर्वे वर्तमान अति सोचिया एव इति आहतु। मरे हुए के लिए नहीं, अपितु दारा जितनी भी पत्नी है जितने भी स्वजन है सब के लिए शोक करो। इस बात को कहते हैं, वयम चत्वम च ये चे मे तुल्य कालाश्चरा चरा जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्राक नैवम अधुना पिभो। शोक करना ही है तो सबके लिए करो, क्योंकि सब लोग मरे हुए हैं, सब लोग मरे हुए हैं। यहां पर चित्रकेतु और अंगिरा जी, नारद मुनि और अंगिरा जी चित्रकेतु को भो कह रहे हैं। भो शब्द जो है संबोधन इति, संबोधन देते हैं, राजा को भो कह रहे हैं, भो का अर्थ होता है राजा। परंतु भो क्यों कहते हैं? वंशीधर जी कहते हैं, भो इति अनेन राजन इति आक्षिप्यते। कहते हैं, राजन अब आप हमारी बात को मान जाओगे, ये हमें आपके ऊपर विश्वास है। वो हे प्रभु तो भगवत भक्तस्य विवेकेन विरक्ति एव युक्त इति सूचयत। हे राजन हमें आपके ऊपर विश्वास है कि अब आने वाला उपदेश सुनकर आपको वैराग्य होगा ही। पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भो शब्द का तात्पर्य यह है। अंगिरा और नारद जी कहते हैं कि राजन अब तुम थोड़ा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब बहुत ऊंची बात करने जा रहे हैं, बहुत विशेष बात है। क्या कहते हैं? क्या विशेष बात है? कहते वयम च, वयम हम दोनों, मैं और अंगिरा और च अर्थात ब्रह्मा जी इत्यादि जितने भी हैं, त्वम च हे चित्रकेतु तुम ये रानी और जितने भी हैं, अर्थात इस संसार में सब लोग जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्रागन एवं अधुनापि भो। इस संसार में जितने भी लोग हैं ये सब लोग जन्म से पहले नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे। देखिए बहुत उत्तम उत्कृष्ट बात है, बुद्धि से सुनिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं भूतकाल में नहीं थे और भविष्य काल में भी नहीं रहेंगे, ये तो ठीक है, तो सब लोग जानते हैं, भूतकाल में नहीं थे और भविष्य में भी नहीं रहेंगे।
परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान में भी सब लोग नहीं हैं। चित्रकेतु ने रोते रोते कहा, प्रभु ये आप क्या कह रहे हो? ठीक है भूतकाल में नहीं है, वर्तमान में भी नहीं रहेंगे, परंतु वर्तमान में ये सब दिख रहा है, दिख रहा है ये सब संबंध सब लोग। तब बहुत मायके की बात कहते हैं, वर्तमान किसे कहा जाता है? देखिए व्याकरण थोड़ा बहुत आप पढ़े हो तो बहुत क्लियर हो सकता है। वर्तमान भूतकाल का अर्थ होगा जो बीत गया है, भविष्य का अर्थ होगा जो होने वाला है, और वर्तमान का अर्थ है जो अभी स्थित है। भूतकाल में ये टेबल यहां पर नहीं था, था नहीं था, और परसों ये टेबल यहां पर नहीं रहेगा, वर्तमान में है। वर्तमान का अर्थ होता है स्थिर, जो हिले नहीं। बात समझ में आ रही है? भूत भविष्य छोड़ दीजिए, वर्तमान का अर्थ है स्थिर, जो अभी ये टेबल यहां पर स्थिर है, न तो घट रहा है न बढ़ रहा है, न इधर जा रहा है न उधर जा रहा है, बिल्कुल स्टॉप स्थिर। वर्तमान का अर्थ होता है स्टॉप स्थिर। तो कहते हैं कि संसार के जितने भी लोग हैं, पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी नहीं है। वर्तमान में कैसे नहीं है? क्योंकि वर्तमान का अर्थ होता है स्टॉप स्थिर। और विजय ध्वज जी कहते हैं देहस्य सर्वथा नाशात, और ये जो देह है कभी स्थिर नहीं रहता है, देह का सर्वथा नाश होते रहता है। और नाशा चेतनस्य तु, और जो चेतन तत्व है उसका कभी नाश नहीं होता है। इस बात को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं, कहते हैं ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टं तत्वत अनयस तत्वदर्शी भी। बड़े बड़े तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि न असत विद्यते भावो, असत वस्तु जो है कभी एक जगह पर स्टॉप नहीं रहती, और सत वस्तु है वे स्टॉप रहती है, वे कभी हिलती नहीं है, न तो उसका भूतकाल होता है न भविष्यकाल होता है, वे एक जगह पर स्थित होती है। ये सत वस्तु का गुण है। और असत वस्तु जो है, असत माने ये देह ही ले लीजिए, और देह के साथ प्रकृति भी हो सकती है, परंतु इस देह को ही समझिए, असत वस्तु यह देह कभी स्थिर नहीं रहता है। माने ये भी आप नहीं समझ पाओगे, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, आज के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं है, कोशिकाएं, ये कोशिका जो है प्रति सेकेंड, सेकेंड के हजारवें हिस्से के स्पीड में परिवर्तन कर रही है, अर्थात मृत्यु की ओर जा रही है। हमारी शरीर की विभिन्न कोशिकाएं, हमारा जो ये शरीर है प्रति सेकेंड बढ़ रहा है, वृद्ध हो रहा है, वृद्धि की ओर जा रहा है, वे एक सेकेंड भी खड़ा नहीं रहता है, स्टॉप नहीं हो जाता है। हमारा शरीर प्रति सेकेंड चल रहा है, वृद्ध हो रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, स्टॉप नहीं है। तो हमारा शरीर प्रति सेकेंड चल रहा है, वृद्धि हो रही है, इसलिए स्टॉप नहीं है, इसलिए वे वर्तमान में भी नहीं है। ये शरीर निरंतर वृद्धि करता है, इसलिए वर्तमान में भी नहीं है, भूतकाल में न तो था न तो भविष्य में रहेगा। दुख किसके लिए कर रहे हो? जो वस्तु भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में नहीं है तो किसके लिए रो रहे हो? बहुत सुंदर सिद्धांत समझाए शिवपाद श्रीधर स्वामी, इसे और क्लियर करते हैं। कहते हैं आदि अंत्योर असतवात स्वप्नवत इति अर्थ। इस बात को और एक दृष्टांत के साथ समझाते हैं, यथा स्वप्न। इसी बात को स्वप्न से लेकर समझिए। स्वप्न यद्यपि झूठा है परंतु सत्य का निरूपण करने में बहुत अच्छा है। कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न में कल्पित दुनिया हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति उड़ता भी है, कभी कभी अपनी मुंडी को लेकर भागता है, स्वप्न में कुछ अलग ही दुनिया होती है। तो व्यक्ति स्वप्न सब लोग देखे होंगे, व्यक्ति स्वप्न देखता है। अच्छा, स्वप्न देखने से पहले वह दुनिया थी? नहीं थी। जग जाने के बाद वह स्वप्न दुनिया रहती है? नहीं रहती। देखिए जीवन कैसा है, ये मनुष्य जीवन कैसा है। स्वप्न देखने से पहले वह दुनिया नहीं थी, स्वप्न देखने के बाद भी वह दुनिया नहीं रहती है। अच्छा, जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है उसके बाजू में 100 लोग खड़े हैं, क्या वे उस दुनिया को देख सकते हैं? इसका अर्थ हुआ कि स्वप्न के पहले भी दुनिया नहीं है, बाद में भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है। ये स्वप्न जो है केवल मन का भ्रम है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में असत का कोई चिरस्थायित्व नहीं है। इस संसार में जीव का न तो भूतकाल, न तो भविष्य, न तो वर्तमान है। फिर भी चित्रकेतु कहता है, सार ये है, शरीर नित्य परिवर्तनशील होने से उनका वर्तमान नहीं है। इतना कहने पर चित्रकेतु कहता है, असत्वे कथम प्रतीति। प्रभु ये तो ठीक है कि असत वस्तु का स्थायित्व नहीं रहता है, अस्तित्व नहीं रहता है, परंतु फिर भी असत वस्तु में अंगिरा और नारद जी ने कहा कि संसार के जो जीव है, जो शरीर है, उसके प्रति लगाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तब चित्रकेतु कहते हैं कि यदि यह शरीरों का अस्तित्व नहीं है तो फिर प्रतीति क्यों होती है, दिखाई क्यों दे रहा है? यह प्रश्न भी अच्छा है। कह दिया कि भूतकाल नहीं है, भविष्य नहीं है, वर्तमान भी नहीं है, तो वर्तमान में दिख क्यों रहा है? आप सब लोग बैठे हो, प्रतीति क्यों होती है? प्रतीति के साथ उसमें अभिमान क्यों होता है कि यह मेरा है? संसार के लोग वर्तमान में नहीं है तो प्रतीति भी होती है, दिख भी रहा है और उसमें अभिमान भी होता है, ऐसा क्यों? तब इसका उत्तर देते हैं, भूते भूतानि भूतेश सुजत्ये वति हन्ति च आत्मसृष्टे स्वतंत्रे न पेक्षो अपि बालवत्। वास्तव में संसार की जो सृष्टि है, इस सृष्टि भूतेश, इस भूत संसार के जीव के ईश भगवान के द्वारा होती है। इस संसार की सृष्टि जो हमें दिख रही है, इस सृष्टि को भगवान उत्पन्न करते हैं। और कैसे उत्पन्न करते हैं? कहते हैं बालवत सृष्टि। जैसे एक बालक खेलते खेलते समुद्र के किनारे पर खेलता रहता है और मिट्टी से अपना घर बनाता है, बालक को कोई टेंशन नहीं होता है कि ये घर कैसे चलाएंगे, लाइट बिल कैसे भरेंगे, दूध का बिल कैसे चुकाएंगे, बालक को कोई टेंशन नहीं होता है। वैसे भगवान ने इतनी सुंदर, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, परंतु उसको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन हम लोग को है। भगवान को कोई चिंता नहीं है, इसलिए कहते हैं बालवत। और भगवान ही इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, इसे चलाते हैं और इसका प्रलय करते हैं। कैसे? बालवत। जैसे बालक समुद्र के किनारे पर मिट्टी से एक घर बनाता है, बेडरूम बनाता है, सब कुछ बनाता है, और मम्मी जब उसे घर पर लेकर जाती है तो अपने ही पैर से उसे तोड़ फोड़ कर भाग कर चला जाता है। उसी प्रकार भगवान में मौज में आकर सृष्टि करते हैं और बिंदास होकर उसे प्रलय कर देते हैं। उसको कोई टेंशन न तो उसको चलाने का भाई। तो भगवान सृष्टि करते हैं और सृष्टि में भी, उस सृष्टि में भगवान डायरेक्ट सृष्टि नहीं करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आ रही है, कहते भूते भूतानि सृजति। भगवान ये सृष्टि डायरेक्ट नहीं, भगवान जीवों की उत्पत्ति जीवों के द्वारा कराते हैं। इस संसार में प्रजा की उत्पत्ति प्रजा के द्वारा, वे डायरेक्ट नहीं करते हैं, प्रजा के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति कराते हैं। कैसे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भूते पिता आदि भी। जैसे भगवान को किसी को प्रकट करना हो तो ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिए। अब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते रहे, उनके पुत्र मनु और मनु के जितने भी पिता है अपने पुत्र को प्रकट करते हैं। भगवान को किसी को उत्पन्न करना है तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, किसी पिता के माध्यम से उसको प्रकट कराते हैं। तो भगवान जीवों के द्वारा जीवों की सृष्टि और अवति और जीवों के द्वारा ही जीवों का पालन कराते हैं। और सर्पा आदि भी हंती, काल के द्वारा, स्वर के द्वारा, अन्य एक्सीडेंट के द्वारा भगवान ही सबको मराते हैं, डायरेक्ट मारने के लिए नहीं आते। तो भगवान इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, परंतु अन्य जीवों के द्वारा यह कराते हैं। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र है, कराने वाले भगवान हैं। वे कह रहे हैं दुख जो है, मान लीजिए एक चक्कू से किसी व्यक्ति को लग जाता है तो चक्कू को दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको मार डाला, मेरे द्वारा ये मर गए। उस चक्कू को चलाने वाले को दुख होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम सब एक इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के द्वारा एक मशीन बनाई गई है और ये मशीन दूसरी मशीन को प्रकट करती है। तो हमारे द्वारा यदि किसी का कोई वध हो जाता है, मर जाते हैं, तो उसमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि भगवान जो है अनुपेक्ष। भगवान इस सृष्टि का सृजन क्यों करते हैं? बहुत मजा आती है उनको। कुछ लोग गाते भी है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अरे तेरे मन में क्या समाई, ये दुनिया क्यों बनाई? कब गाते पता है? जब दुख मिलता है तब, जब सुख होता है तब तो अरे यार मजा आ गया। दुखी होते हैं तब ये सोचते हैं क्यों बनाई ये दुनिया। अरे उसने अपने लिए नहीं बनाई, हमारे लिए बनाई। यहां पर लिखा है अनपेक्ष। क्या ये भगवान को दुनिया बनाकर अपना काम नहीं निकालना है? अपेक्षा रहित है। ऐसा नहीं कि दुनिया में हम सब लोग को बनाए भगवान बहुत मजा लूट रहे हैं, बेचारे बहुत दुखी है वो। मान लीजिए एक आपका पुत्र आपको छोड़कर अपने घर से चला जाए तो आप सुखी होगे कि दुखी? भले वे कैसा भी क्यों ना हो, मूर्ख हो, पागल हो, कैसा भी हो, पिता सदैव दुखी होता है। वैसे वो भी परम पिता है, पिता के भी पिता है। एक जीव उसे छोड़कर आ गया तो क्या वे सुखी रहेंगे? कभी नहीं, दुखी है। सृष्टि बनाने का कोई उद्देश्य अनपेक्ष है। वो सृष्टि के प्रारंभ में मैं आपको यह कथा सुनाऊं, हम सब लोग भगवान के अंश हैं, हम सब आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, ममेव वांश। भगवान कहते हैं ये जो जीव है मम अंश, मेरा अंश है। और भगवान का अंश होने के नाते हम सब लोग भगवान के पुत्र हैं। कारण सागर में महाविष्णु के रोम रूप से अनंत अनंत जीव प्रकट होते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा यह जीव तटस्थ शक्ति है, तटस्था शक्ति। तटस्थ का अर्थ होता है तट पर अस्थित। यह जीव जो है जब भगवान से प्रकट हुआ तो किस स्थान पर प्रकट हुआ यह जानना चाहिए। हम सब भौतिक जगत में रह रहे हैं और इस भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में कारण समुद्र में यह जीव की उत्पत्ति हुई, हम सब का प्राकट्य हुआ। कब से? अनादि काल, कोई डेट नहीं है। ये आत्माएं जब भगवान से प्रकट होती हैं तो प्रकट होकर मेजोरिटी ये आत्मा जो होती हैं भगवान की सेवा में लग जाती है, क्योंकि भगवान के अंश है और भगवान का अंश होने के नाते आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो जितने लोग प्रकट होकर भगवान की सेवा करना चाहे वे सब लोग वैकुंठ में चले गए। वेदों में यह वर्णन है, सब लोग वैकुंठ में चले गए। परंतु कुछ लोग ऐसे थे, मामूली कुछ लोग सोचे कि हम इनकी सेवा क्यों करें, ये सबकी सेवा ले रहा है कि हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी इसके जैसा भगवान बनना है, हमारे भी पत्नी होनी चाहिए, हमारा भी कोई पग दबाना चाहिए। मेजोरिटी लोग तो सब वैकुंठ में चले गए और नित्य पार्षद हो गए। परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान की सेवा करना नहीं चाहे और भगवान से मांग करे, जैसे एक पुत्र पिता से मांग करता है वैसे ये सभी आत्मा परमात्मा भगवान से मांग करने लगी कि हमें भी भोक्ता बनना है, हमें भी आपकी तरह पिता बनना है, भगवान बनना है, हमारे लिए कुछ करो। जैसे एक छोटा सा बालक अपने पिता से कहता है मुझे घर घर खेलना है, छोटा सा कुकर गैस चूल्हा लाकर दीजिए। माता पिता कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन फिर भी वो बच्चा इतना जिद पकड़ लेता है, रोने लगता है। तब क्या करते हैं माता पिता? तब पिताजी खरीद कर उसे वे लाकर देते हैं और कहते हैं कि जब थक जाओगे तो पढ़ाई में ध्यान देना। वैसे ही हम सब लोग भोग भोगना चाहे, देखिए ये सृष्टि थी नहीं, भौतिक सृष्टि का निर्माण ही नहीं था, ये पृथ्वी कभी थी ही नहीं, परंतु भगवान को जबरदस्ती बनानी पड़ी हमारे लिए। हमने कहा कि हमें भोग भोगना है, भगवान ने बहुत मनाया, देखो आप सब लोग दास हो और दास केवल सेवा करने से ही आनंद ले सकता है, भोग करना केवल भगवान का काम है, हमारा काम केवल सेवा करना है, परंतु हम सेवा करना नहीं चाहे। जैसे वो बालक बहुत बहुत जीत कर किया, वैसे हम सब लोग जीत किए और जीत के कारण भगवान को अपनी एक शक्ति को प्रकट करना पड़ा, जिसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं, और बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया। भौतिक जगत का निर्माण करने के बाद 84 लाख योनि का निर्माण, और जितने भी लोग वहां पर, जितनी भी आत्माएं थी, अपने अपने कर्म के अनुसार सबको यहाँ फिट कर दिया। इस जगत में जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये सब लोग भगवान से विमुख होकर यहाँ पर आए हैं, ये साक्षात भगवान चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्णेर बहिर्मुख, भगवान से जब जीव विमुख हो जाता है तो माया के द्वारा इस भौतिक जगत में आता है। भगवान को यह संसार हमारे लिए बनाना पड़ा, उनके लिए नहीं। जैसे एक पिता की इच्छा होती है कि बालक रूठकर चला गया है तो अब जल्द से जल्द वापस घर पे आ जाए, वैसे भगवान की 24 घंटा इच्छा रहती है कि ये जीव बिचारे दुखी हो रहे हैं, कैसे भी करके जल्दी मेरे पास आ जाए और सुखी हो जाए, ये भगवान की अपनी इच्छा है। और इसीलिए तो भगवान इस संसार में नारद व्यास और बड़े बड़े गुरुओं को भेजते हैं कि प्रचार करो और सब लोग को ज्ञान प्रदान करो और फिर से वे लोग मेरे पास वापस आ जाए। भगवान की अरेंजमेंट है, भगवान की इच्छा है, नहीं तो आप कल्पना तो करो, ये सब आयोजन करना ये कोई मामूली बात नहीं है। सबके मन में प्रेरणा देना, सब लोग को एक साथ यहाँ पर उपस्थित होना, अरे एक घर में दो भाई भी 2 घंटा साथ में नहीं बैठ सकते हैं, और यहाँ पर किसी का कोई रिलेशन नहीं, सब लोग दूर दूर से, फिर भी एक साथ बैठकर सुनना, ये भगवान की कृपा है। भगवान की इच्छा है कि ये लोग मेरे पास आए। पुत्र की इच्छा कभी कभी नहीं होती है, परंतु बाप निश्चित चाहता है कि पुत्र मेरे साथ ही रहे। तो यहां पर आया है अनपेक्ष, भगवान की कोई इच्छा नहीं है कि यहां पर लोग रहे, ये सृष्टि बने हमारे लिए, सृष्टि बनाए। तो हम सबको चाहिए कि हम जहां के हैं वहां पर जाए और सुखी हो जाए। कहते हैं चित्रकेतु का प्रश्न था कि इस जीव का, ये मनुष्य के शरीर का, न तो भूत भविष्य वर्तमान है तो दिख क्यों रहा है। तब अंगिरा और नारद जी कहते हैं कि भगवान ने यह सृष्टि बनाई है, सृष्टि बनाई है अपने अपने कर्मों को भोगतने के लिए, परंतु सब लोग इस सृष्टि में आसक्त हो जाते हैं। अयम च जन्म आदि व्यवहारो देहानाम एव नतु आत्मनम इति आहत। इस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं। अब अगले श्लोक में कहते हैं कि भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं, यह शरीर की सृष्टि होती है, शरीर का नाश होता है परंतु आत्मा का नाश नहीं होता है। अगले श्लोक में नारद जी और अंगिरा जी कहते हैं, देहेन देहिनो राजन देहा देहो बिजायते, बीजा देव यथा बीज देह्यर्थ इव शाश्वत। आज का प्रवचन बहुत कड़ा है, कुछ लोग बहुत टेंशन में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बुद्धि लगाइए थोड़ी और समझ में आएगा। देखिए ज्यादा स्वीट खाने से डायबिटीज हो जाती है, इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा सुनने में भी मजा नहीं है, थोड़ा कड़ा भी सुनना चाहिए। भोजन में जब तक मिर्ची न हो तब तक आनंद नहीं आता है, तो इसे मिर्ची ही समझिए। शास्त्र में सिद्धांत को मिर्ची के साथ अपनाया गया है, कथा ही बहुत अच्छी लगती है, राम कथा, ये कथा, वो कथा, यद्यपि वे अच्छी है ही, परंतु कथा के साथ साथ सिद्धांत भी जान लेना चाहिए। सिद्धांत यदि आप नहीं जानोगे तो भक्ति में कभी भी पतन हो सकता है। आज भले आप हरे कृष्ण करने लगो, परंतु इस बात को यदि आप नहीं समझ लिए हो तो कभी भी आपको कोई भी डिगा सकता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे थे, एक बार एक गांव का लड़का और एक शहर का लड़का दोनों आपस में मिले। गांव के लड़के को पता है कि किस प्रकार से एक वृक्ष को उगाया जाता है। जमीन में बीज बोना है, पानी डालना है, वृक्ष उग जाएगा। शहर का लड़का भी जानता है कि किस प्रकार एक वृक्ष को उगाना है, परंतु शहर का लड़का जो है स्कूल और कॉलेज में पढ़कर इस बात को सिद्ध किया है कि कितना पानी डालेंगे, कितना पत्ते में पहुंचेगा, कितना डाली में जाएगा, कितना फल में जाएगा, कौन सी ऋतु में कितना, ये सब कुछ जानता है। अब गांव के लड़के को कहा जाए कि अरे मूर्ख, आज इतना पानी मत डालो, आज कम डालो। गांव का लड़का कहेगा ठीक है कम डालेंगे। परंतु शहर के लड़के को यदि कुछ कहा जाए कि पानी आज कम डालो, तो तुरंत कहेगा नहीं नहीं, इसको इतना नाइट्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन के लिए इतना पानी आवश्यक है और इतना परसेंट पानी वहां पहुंचेगा और वहां पानी पहुंचाने के लिए इतना तो डालना ही होगा। यदि वे इस सिद्धांत को जानता है तो वे कभी भी अपने रास्ते से डिगेगा नहीं, और सिद्धांत को नहीं जानने वाला व्यक्ति कभी भी डिग जाएगा। इसलिए एक जगह पर स्थित रहने के लिए ये सब बातों को जानना बहुत आवश्यक है। इसे साक्षात भगवान कहते हैं सिद्धांत बलिया चित न करे आलस। ये सब सिद्धांत सुनने में आलस नहीं करनी चाहिए, सो नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीपाद सिद्धेश्वर स्वामी कहते हैं कि इस श्लोक में चित्रकेतु और अंगिरा कह रहे हैं कि जैसे ये देह, ये शरीर का जन्म है और मृत्यु है, परंतु आत्मा का न तो जन्म है न तो मृत्यु है। कैसे? देहेन देहिनो राजन देहाद्यो अभिजायते बीजा देव यथा बीज देयर्थ इव शाश्वत। कहते हैं जैसे एक बीज से दूसरा बीज जन्म लेता है, दूसरे बीज से तीसरा बीज जन्म लेता है, तब तक तो पहला बीज मर जाता है, तीसरे बीज से चौथा बीज, तब तक दूसरा बीज मर जाता है। एक और जन्मना शुरू है, एक और मरना शुरू है। तो ये बीज जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, परंतु पृथ्वी तो वैसी की वैसी रहती है। वैसे ये शरीर जन्म लेता है मरता है, जन्मता है मरता है, परंतु आत्मा तो वैसी की वैसी रहती है। बीज का उगने से जैसे जमीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जमीन वैसे की वैसी रहती है, जमीन कम नहीं हो जाती, नहीं बढ़ जाती है, वैसे ही यह शरीर जन्म लेने पर या मरने पर आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गीता में भगवान कहते हैं न जायते म्रियतेवा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूयम अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। ये अर्जुन, आत्मा का न तो जन्म होता है न तो मृत्यु होता है। आजा अजो नित्य शाश्वत पुराणम नैनम चिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलिदंत्यापो न शोष्यति मारुत। किसी भी शस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता है और हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्यों रो रहे हो? आत्मा शाश्वत है, देह नाशवंत है, नाशवंत देह नाश हो भी गया तो क्यों रो रहे हो? क्यों रो? शाश्वतो नित्य एव देही नित्यम वद्योयम। भगवान कहते हैं देही जो है नित्यम अवद्योयम। देही माने देह में रहने वाला आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ननु नश्वर देह प्रतियोगित्वा देही अपि न शाश्वत सात तत्र आहतु। कभी कभी संसार में लगता है कि शरीर और आत्मा साथ साथ में रहता है। शरीर अशाश्वत है तो आत्मा भी अशाश्वत होगा। आज के वैज्ञानिक साइंटिस्ट यही कहते हैं, बहुत बहुत पढ़ लिख कर पता है क्या कहते हैं, आजकल के बहुत बहुत पढ़ाई करने वाले और पढ़कर वैज्ञानिक बनने वाले लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। आत्मा नामक तत्व को तो वे स्वीकार ही नहीं करते हैं। वे लोग कहते हैं यह शरीर कुछ रसायनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसे रसायन आपस में मिलते हैं तो वे रसायन आपस में मिलकर शरीर बन जाता है। प्रभुपाद जी कहते अरे मूर्खो, रसायन से ही शरीर बनता है तो बनाओ दो तीन शरीर को और मरे हुए को जीवित रखो। हम जैसे छोटे लोग को नहीं पर बड़े बड़े लोग को तो जीवित रखो, धीरूभाई अंबानी जैसे को और माइकल जैक्सन को जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बहुत पढ़ लिख कर बस यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, परंतु शास्त्र श्रीमद् भागवत भगवत गीता प्रमाण है कि यह शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला आत्मा अलग अलग है। और हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। साधारण कॉमन सेंस के द्वारा आप जानिए, एक बालक को पूछा जाए कि आपने यह कमीज पहनी यह किसकी है, तो बालक कहेगा ये मेरी है। हम भी यही कहेंगे मेरी है। ये कमीज मेरी है, इसका अर्थ है कि मैं और ये कमीज दोनों अलग अलग है, निकालकर बाजू में रख सकता हूं। ये कमीज मेरी है, इसका अर्थ यह है कि मैं और कमीज अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार पूछा जाए तो ये शरीर किसका है, तो हम कहते मेरा है। कॉमन सेंस देखिए, ये शरीर मेरा हम कह रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि मैं और यह शरीर अलग अलग है। जैसे मैं और कुर्ता अलग अलग है, तो मैं और शरीर अलग अलग है, तो मैं कहने वाला वस्तु व्यक्ति कौन है, वह आत्मा। वास्तव में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का कभी नाश नहीं होता है और शरीर का नित्य नाश होते रहता है। गत देह देही विभागो यम विवेक कृत पुरा जाति व्यक्ति विभागो यम यथा वस्तुनि कल्पिता। जैसे पंच महाभूत से बने हुए, पंच महाभूत से बने हुए इस शरीर को हम नाम दे देते हैं कि ये इस जाति का है, इस गांव का है, ये जाति का है, ये नाम का है। पंच महाभूत से बने हुए शरीर को हम नाम देते हैं, उसकी जाति देते हैं। वह पंच महाभूत से बना हुआ शरीर पंच महाभूत में मिल जाता है, मर जाता है, जाति और नाम वैसे का वैसा रह जाता है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच चीज से बना हुआ यह शरीर मर जाता है, जाति और नाम रह जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर घड़ा जो है मिट्टी से बनता है, घड़ा जो है पहले मिट्टी था, मिट्टी में से घड़ा हुआ, फूट जाने के बाद फिर मिट्टी हो गया। मिट्टी था कुछ काल के लिए, घड़ा हुआ और फिर मिट्टी हो गया। वैसे हम सब लोग पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश थे, मिलकर यह शरीर बना और फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में मिल जाएंगे। तो यह शरीर इस प्रकार से मिल जाएगा, परंतु आत्मा वैसा का वैसा ही रहेगा। देही जो है शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए हे चित्रकेतु, आत्मा का कभी नाश नहीं है, शरीर का नित्य नाश होते रहता है। नाश होने वाली वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इतना कह के अंगिराजी और नारद मुनि चुप हो गए। देखना चाहते थे कि फर्क हुआ या नहीं हुआ सामने वाले में। एवं ऋषिभ्याम बोधित चित्र केतु किंचित संप्राप्त विवेकस्तो प्रीति उवाच इति आह मुनि एवं इति। इतना कहने पर चित्र केतु को थोड़ी बुद्धि आई, विवेक हुआ, जैसे आप सबको हुआ होगा। चित्र केतु को विवेक हुआ। अब विवेक उसे हो सकता है जिसमें बुद्धि हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने के लिए मैं नहीं, ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी नहीं समझ सकता। दृष्टांत देते हैं जैसे फूल ही फर हो डाल पर, जैसे सूखे हुए पेड़ के ऊपर अमृत की वर्षा हो जाए फिर भी वहां फूल नहीं लग सकता है। सूखी डाली के ऊपर अमृत की वर्षा होने पर भी वहां फूल नहीं लग सकता है। वैसी मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंची समान। मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा जी भी समझाने के लिए आ जाए फिर भी वो समझ नहीं सकता। इतना सुंदर भागवत है और इतना सुंदर समझा रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएंगे। तो आप सब लोग समझ चुके हो। चित्र केतु भी सिद्ध स्वामी कहते हैं कुछ समझ गए हैं। अंगिर और नारद चुप हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं आश्वासितो राजा चित्र केतु द्विजोक्ति भी विमृश्य पाणी ना वक्रम आदि म्लानम भाषत। इस प्रकार कहने पर, राजा को आश्वासन देने पर चित्र केतु आदिम्लान कर देता है शोक से मुरझाया हुआ चेहरा। चित्र केतु का मुंह उतर गया था और अपने एक हाथ से अपने इस कमजोर देह को आंसू को पोंछ रहा था। पोंछते पोंछते चित्र केतु ने अंगिरा और नारद ऋषि को कहा, शिराजो वाच। राजा चित्र केतु ने कहा, को युवाम ज्ञान संपन्नो महिष्टो च महियसाम अवधूतेन वेशेन गुड विह समागतो। चित्र केतु ने कहा कि को युवाम, आप दोनों कौन हो? उसे यह भी नहीं पता था ये अंगिरा है कि नारद है। रो रोकर इतना आंसू गिरा चुका था, इतना आंख के आगे आंसू था कि पहचान भी नहीं पाए ये दोनों कौन है। इतना प्रवचन कर दिया, इतना उपदेश दे दिया, परंतु वक्ता का नाम भी नहीं पता चला। तुरंत पूछे, को युवाम, आप दोनों कौन हो? ज्ञान संपन्न, ज्ञान तो अद्भुत है आपके पास। महिष्टोच मही यसाम, इस मही इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले आप तो पूजनीय लगते हो, वास्तव में आप तो पूजा करने के योग्य हो। और इस प्रकार अवधूत के वेश में, वास्तव में अवधूत उसे कहा जाता है जो आत्मा में विचरण करे। आत्मा में विचरण करने, आत्मा में मतलब अपने को आत्मा समझकर संसार के सभी कार्य करे, उसे अवधूत कहा जाता है। अपने को आत्मा समझकर यदि आप संसार के कार्य करते हो तो दुख है ही नहीं। दुख इसीलिए है कि अपने आप को देह मानते हो कि मैं ये हूं, मैं फलाना भाई हूं, मैं ये हूं, मैं इसका पति इसका पत्नी, दुख इसीलिए है। यदि स्वयं को आत्मा समझकर कोई भी कार्य करो तो दुख है ही नहीं। ये जो भी मांग है सब शरीर की है, आत्मा की कोई मांग नहीं है। अवधूत उसे कहा जाता है जो अपने आप को आत्मा समझकर विचरण कर, आत्मा मानकर संसार में विचरण करते थे अवधूत वेश। चित्र केतु कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, जो महान होते हैं वे ही आप लोगों की तरह विचरण करते हैं। ननु महता नाम विचरणे किम प्रयोजन इति आशंका या है। मन में आशंका हुई कि आप यहां पर क्यों विचरण कर रहे हो, यहां पर क्यों आए? चरन्ति अवनो कामम ब्राह्मणा भगवत प्रिया मातृशाम ग्राम्य बुद्धि नाम बोधा योन मत्त लिंगित। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, एक शब्द काफी है, ब्राह्मणा भगवत प्रिया। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? संसार में ब्राह्मण की परिभाषा ही कुछ बदल दी गई है। ब्राह्मण माने यज्ञ कराने वाला, ब्राह्मण माने मंत्र बोलने वाला। ब्राह्मण का अर्थ शास्त्र में साफ साफ दिया गया है, जन्मना शूद्र जायते, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, कलो शूद्र संभवा। परंतु जन्मना शूद्र जायते संस्काराद द्विज उच्चते, जब किसी व्यक्ति का संस्कार होता है उसे जनोई पहनाई जाती है, दीक्षा लेते हैं, तब उसे द्विज कहा जाता है। और जनोई पहनने के बाद जब वो वेद शास्त्र का पठन पाठन करता है, वेद पाठात भवेत विप्र, शास्त्र का पठन कर जब व्यक्ति वह करने लगता है तब उसे विप्र कहा जाता है। और शास्त्र का अध्ययन करके जब वह भगवान को समझने लगता है, ब्रह्म को समझने लगता है, तो वेद पाठात भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, भगवान को मानने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। पान मावा और सिगरेट पीने वाले को ब्राह्मण नहीं कहा जाता है आजकल के ब्राह्मण। ये बहुत दुख की बात है कि आजकल के ब्राह्मण
बड़े बड़े व्यसनों में लगे हुए हैं, खुद ये सब व्यसन करेंगे, दूसरों को कैसे मुक्त कराएंगे। ब्राह्मण का अर्थ है भगवान का भक्त, भगवान को जानने वाला। वैष्णव को भी ब्राह्मण कहा जाता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण नहीं, वो कथा क्यों करते हो, ये सब ब्राह्मण का काम है। आज ब्राह्मण लोग मूर्ख हो गए, ब्राह्मण लोग ज्ञान देना बंद कर दिए, इसलिए हम जैसे लोगों को कथा करनी पड़ती है, नहीं तो यह काम ब्राह्मण लोगों का है। बहुत दुख होता है हमारे इस भारत भूमि के ऊपर, जिस भूमि से भागवत प्रकट हुआ, गीता प्रकट हुई, साधु संत महात्मा जिस भूमि पर हुए, उस भूमि पर आज ब्राह्मण लोग सिगरेट तंबाकू खाते हैं, ब्राह्मण का काम छोड़ दिए, केवल धन लूटने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं आजकल के ब्राह्मण। और आजकल के अपने आप के कथाकार कहने वाले, कैसे कथाकार? अरे ब्राह्मण का अर्थ होता है भगवान को प्रेम करने वाला, और प्रेम में धन की बात नहीं आती है। जहां धन होता है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां धन नहीं। आपकी पत्नी भी आपको घर पर भोजन खिलाती है और होटल का वेटर भी भोजन खिलाता है, दोनों प्यार से भोजन खिलाते हैं, दोनों परोसते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। होटल वाला पैसा ले रहा है, बिजनेस धंधा कर रहा है, और पत्नी धन नहीं ले रही है, इसलिए वे आपको प्रेम कर रही है। जहां प्रेम होता है वहां पैसा नहीं होता है। और आजकल के लोग भागवत बोलने वाले पैसे लिए बिना व्यासपीठ के ऊपर नहीं बैठते। अरे ये प्रेम नहीं, भागवत और भगवान के अति प्रेम नहीं, ये तो ओपन धंधा है, बिजनेस है। और ऐसे बिजनेस वालों के मुख से कथा सुनोगे तो कभी जीवन परिवर्तन नहीं होगा। हमने देखा है कैसे लोगों की कथा में हजारों लोग होते हैं, एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चंद लोग बैठे हैं निष्काम भाव से यदि कथा हो रही है तो हृदय परिवर्तन हो सकता है। आप जरा देखिए तो सही, सोचिए, भागवत बोलने वाला, ज्ञान देने वाला एक छोटे से धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ, संसार की आसक्ति से लोगों को कैसे मुक्त करा सकता है, जो केवल धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ। ब्राह्मण भक्त उसे कहा जाता है जो भगवान से प्रेम करे, और प्रेम करने में कोई धन की बाधा नहीं होती है। वैष्णव को, भगवान के भक्त को भी ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणा भगवत प्रिया, और ऐसे ब्राह्मण जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं वो कैसे होते हैं, तुरंत चित्रकेतु कहते हैं भगवत प्रिया, वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। निष्काम भाव से यदि भगवान की सेवा करते हो तो भगवान उस भक्त से प्रेम करते हैं, कितनी बड़ी बात है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम करो, संसार का कोई भी व्यक्ति आपको प्रेम करेगा, क्या दे सकता है। और कल्पना करो भगवान हमसे प्रेम करने लगे तो क्या बाकी रह गए। ब्राह्मणा भगवत प्रिया, भगवान की भक्ति करने से भगवान उसे प्रेम करने लगते हैं, भक्ति करने से भगवान हमारे वश में हो जाते हैं। जीव गोस्वामी इसकी टीका में लिखते हैं, भगवतो विशेषतो भगवत वत्सल्य सामान्य तोपि ब्राह्मण्य देवस्य प्रिया। अरे जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उसकी रक्षा भगवान सदैव 24 घंटा करते हैं। कोई स्टेज के ऊपर नहीं आएगा थोड़ी देर। हरे कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी सेवा, उनकी रक्षा सदैव भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं भगवत वत्सल इति, जैसे एक गाय अपने ताजे जन्मे हुए बछड़े की रक्षा करती है। आपने देखा होगा गांव में रहने वाले, जब गाय बछड़े को जन्म देती है उस बछड़े के ऊपर कई सारी गंदगी वीर्य लगा हुआ रहता है, गाय अपनी जीभ से अपने बछड़े की उस गंदगी को साफ करती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भी उस बछड़े को साफ करने जाए तो गाय उसे लात मारकर भगा देती है, अपने बछड़े की सदैव रक्षा करती है।
जैसे गाय अपने ताजे बछड़े की रक्षा करती है, वैसे भगवान अपने भक्त से रक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल कहे जाते हैं। एक नहीं बार बार इतिहास खोल कर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने भगवान कृष्ण की भक्ति की है, भगवान ने उससे प्रेम किया है और उसकी रक्षा की है। कितना याद कराऊं, एक नहीं अनेक घटना। भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज जो 5 साल के बालक थे और उनके पिता संसार के सबसे बड़े असुर, सबसे बड़े शत्रु, प्रहलाद भगवान का शुद्ध भक्त, भक्ति करने की इच्छा, परंतु पिता भक्ति नहीं करने देता था। देखा कि मेरा पुत्र कृष्ण की, विष्णु की भक्ति कर रहा है, तुरंत मारने का आदेश दे दिया। एक पिता ने अपने पुत्र को मारने का आदेश। सुखदेव गोस्वामी वहां पर कहते हैं, दिग्गजे दंद सुकेश अभिचारा व पातने। एक नहीं प्रहलाद को मारने के सैकड़ों प्रयास। दिग्गजे बहुत बड़े बड़े हाथी, हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास, परंतु हाथी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दंत सुकेश बड़े बड़े सांप से भरे हुए एक रूम में बंद कर दिया, मार डालो इसे। अरे सांप के मणि निकल गए, दांत टूट गए, सारा जहर खाली हो गया, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हो पाया। होलिका की गोद में बिठाया गया, जिस होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है, वरदान उल्टा हो गया भगवान के भक्त के सामने। होलिका मर गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों से फेंका गया, समुद्र में पत्थर बांधकर डुबाया गया, परंतु बार बार प्रहलाद महाराज बचते रहे, यहां तक प्रहलाद को एक चोट तक नहीं आई। संपूर्ण मार देने का प्रयास करने के बाद भी एक चोट नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए भगवान बैठे हैं। भगवत प्रियया, जो भगवान का प्रेमी हो गया वह तो इस संसार में कभी कहीं दुखी नहीं होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं सदैव। इसलिए तो एक संत ने बहुत सुंदर कहा है कि संसार के दो हाथ वाले भक्त को क्या क्या बिगाड़ सकते हैं। द्वय हाथन वारो सके जन को कहां बिगाड़। दो हाथ वाला भगवान के भक्त को क्या क्या दुख दे सकता है, जिसकी रक्षा करने वाला हजार हाथ वाला बैठा हो। नारायण रखवार है जाके भुजा हजार, जिसकी हजारों भुजा है और हजार भुजा वाला जिसकी रक्षा करने के लिए बैठ जाए, ये दो हाथ वाला क्या बिगाड़ सकता है। वास्तव में हम भक्तों को किसी का डर नहीं और किसी का टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान रक्षा करने वाले हैं। और जो भजन नहीं करते हैं 2400 घंटा डरते रहते हैं, 2400 घंटा शोक में रहते हैं, भजन नहीं है क्योंकि भगवान के प्रेमी नहीं है। ब्राह्मणा भगवत प्रियया, एक शब्द पूरी भागवत सप्ताह के लिए काफी है। ब्राह्मणा भगवान के भक्त भगवान के प्रिय हो जाते हैं, और भगवान के प्रिय होने के बाद उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज इस बात को याद कराते हैं कि उस भरी सभा में, और भागवत के प्रथम स्कंद में महारानी कुंती कहती है कि हे प्रभु, आपने हमसे कितना प्रेम किया, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की कितनी भक्ति की है। देखिए, एक मां एक स्त्री ने कृष्ण की भक्ति की, भगवान ने उससे कितना प्रेम किया। प्रेम की भी हद होती है। संसार में व्यक्ति प्रेम कर करके कितना कर सकता है बताइए, परंतु भगवान सभी प्रेम की हद को लांघ देते हैं। महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना में कहती है, प्रभु आपने मुझसे जितना प्रेम किया उतना तो मेरी बहन देवकी से भी नहीं किया। देवकी को 9 महीने तक दुख दिया, 6-6 बच्चे मर गए, तब जाकर जन्म लिया और जन्म लेकर नंद बाबा के वहां, परंतु मेरे प्रति आपने कितना अद्भुत प्रेम किया प्रभु। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छत मृदे मृदे नेक महारथाश्रे दोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षिता। अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि प्रभु कितना प्रेम, विशान महाग्ने आपने मेरे छोटे छोटे बालकों की कितनी बार रक्षा की, नहीं तो ये दुर्योधन ने मेरे पुत्र भीम को मार ही दिया था। अब सब महाभारत की कथा को जानते हैं, दुर्योधन बचपन से ही पांडवों का शत्रु था, द्रोही था, और दुर्योधन ने सोचा कि भीम जो है सबसे शक्तिशाली है, इसे मार देंगे तो और सबको मारना बहुत आसान है। भीम को मारने के लिए एक योजना बनाई, कहा कि हम लोग जाते हैं गंगा में पिकनिक मनाने के लिए। भीम ने कहा चलो, और भीम के लिए बहुत लड्डू बनाए और लड्डू में डाल दिया जहर। भीम खाने में बहुत एक्सपर्ट है, भोजन को देखकर ही रह नहीं पाते हैं, और लड्डू तो उसे बहुत प्रिय है। पिकनिक में जाकर नदी के किनारे जाकर कहा कि चलो भोजन का टाइम हुआ, क्या भोजन बनाया? भीम ने कहा लड्डू, सभी जहर वाले लड्डू खिला दिया। खाकर तुरंत भीम मूर्छित मर गया, मार डाला। दुर्योधन ने कहा कि इसको गंगा में फेंक दो, हम कहेंगे कुंती को कि हम लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते नदी में गया तो डूब गया। भीम को नदी में फेंका और नदी से बिल्कुल नीचे नीचे पाताल में आ गया। जैसे ही सर्प लोक में आया, सभी सर्प उसे डसने लगे। अद्भुत घटना, सर्प जैसे ही डसते थे सर्प मूर्छित हो जाते थे। आपने सुना होगा लोहा लोहे को काटता है, ये भीम जहर वाला हो चुका था, और जहर वाला व्यक्ति जहर वाले को स्पर्श करे तो उसको वो मूर्छित हो रहा था। सर्प जाकर अपने राजा को कहा कि अद्भुत व्यक्ति आया है, हम जितना उसे मार रहे उतना वो जीवित हो रहा है, मरना चाहिए उल्टा जीवित हो रहा है, का उसे यहां लेकर आओ। ये सारे सर्प उसे बंदी बनाकर उनके राजा के पास लेकर गए। जाकर देखा तो सर्प के राजा का जो मंत्री था वह भीम का नाना था। कहा अरे बेटा यहां क्या कर रहा है तू? भीम ने कहा नाना जी, नाना माने अपनी मम्मी माता के पिता के पिता। कहा कि दुर्योधन ने मुझे जहर खिलाकर इसमें फेंक दिया। बेटा डरो मत, यहां 8 अमृत का कुंड है, पहले इस कुंड के पानी को पियो और पीकर जितना स्नान करना है उतना करो। एक कुंड का पानी पियोगे और स्नान करोगे तो उसमें 2000 हाथी का बल मिलेगा। भीम गया और 8 कुंड में जी भरकर पानी की पिया, जी भरकर स्नान किया और 16000 हाथी का बल प्राप्त कर लिया। इस प्रकार फिर भीम को उनके नाना आए ऊपर छोड़ने के लिए। महारानी कुंती कहती है ये मर ही गया था, वास्तव में भीम मर ही चुका था, परंतु आपकी कृपा से भीम की रक्षा हो गई। केवल भीम ही नहीं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभायाम, कहते उस कुरुवंश की असत सभा में जिसमें पाखंडी बैठे थे, पाखंडी न कहूं तो क्या कहूं, जिस सभा में एक स्त्री को नग्न करने का प्रयास किया गया, मेरी कुल वधु मेरी बहू को नग्न करने का प्रयास किया गया, प्रभु आप नहीं होते न जाने हमारा क्या हुआ हो। महाभारत में वर्णन है, दुर्योधन ने शकुनी का पक्ष लेकर छल करके युधिष्ठिर से सब कुछ जीत लिया, अंत में वनवास दे दिया, और वनवास देने के बाद उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीत लिया तब भरी सभा में दुर्योधन ने ऐलान किया, आदेश दिया कि दुशासन अब ये द्रौपदी हमारी हो चुकी है, द्रौपदी को इस भरी सभा में बीचों बीच लाया जाए। दुशासन गया जिसके पास 10000 हाथी का बल था। उस दिन महाभारत में वर्णन, द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन ने कहा कि आपको बुलाया है, द्रौपदी नहीं गई। द्रौपदी ने ना कहा, दुशासन जबरदस्ती उसका बाल पकड़कर खींचकर घसीटते हुए द्रौपदी को उस भरी सभा में लेकर आया, और वह अबला नारी भरी सभा में धृतराष्ट्र के अपने ससुर के चरणों में प्रार्थना कर रही है, पर वह पुत्र मोह में अंधा धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल पाया। इतने बड़े ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बेटे हैं, परंतु कहा कि मेरे बस में कुछ नहीं। पितामह भीष्म जी सभा में बैठे थे, द्रौपदी उनके पास गई, पितामह आप तो कुछ कीजिए। पितामह भीष्म ने भी कह दिया, देवी ये नीति के नियम बहुत सूक्ष्म है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी सबके पास गई, किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में अपने पतियों के पास गई, पांचों पांडवों के पास गई, आप तो मेरी रक्षा करो, पांचों लोगों का सिर नीचे झुक गया। उस समय दुर्योधन बोला था कि दुशासन क्या कर रहे हो, जल्दी इनकी साड़ी निकालो, नग्न करो, मेरी जंगा के ऊपर बिठाओ। दुशासन चला, द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी सबको प्रार्थना कर रही है। देखिए उस द्वापर युग में जिस सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया, महाभारत में वर्णन है 20,000 कुर्सी लगी थी, 2-3 लोग नहीं थे, भरी सभा में। ऐसा दृश्य आज कलयुग में भी नहीं देखने मिलेगा। जो कार्य द्वापर में हुआ था, भरी सभा में एक कुरुवंश की वधु के ऊपर को नग्न करने का प्रयास, दुशासन साड़ी खींचने लगा, सबको प्रार्थना, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। द्रौपदी ने अपने हाथ से साड़ी को पकड़ कर रखा कि नहीं निकालने दूंगी, परंतु 10,000 हाथी का बल और कहां यह बिचारी द्रौपदी अबला नारी कैसे रक्षा कर पाए अपनी। उस समय द्रौपदी को वेद व्यास जी की कही हुई बात याद आई। द्रौपदी के विवाह के समय वेद व्यास ने कहा था कि बेटा, इस संसार में जब दुख का समय हो, संसार का साथ जब न मिले, तब कृष्ण को याद करना, वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। याद आ गए। महाभारत में वर्णन है द्रौपदी ने सबको ललकारा। द्रौपदी ने सबको ललकारते हुए कहा कि तुम लोग क्या जानो, हस्तिनापुर में रहने वाले क्या जानो कि एक बहू की स्त्री की लाज मर्यादा और इज्जत क्या होती है। अरे पानी के बीच में बैठा हुआ मेरा भाई जानता है कि लाज और इज्जत क्या होती है। तुरंत द्रौपदी अपने दोनों हाथ उन्मुक्त कंठ से दोनों हाथ ऊपर करके, हे कृष्ण द्वारकावासी पाही पाही जगत पते, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, कृष्ण के सभी अंग फड़कने लगे, सोने के आसन के ऊपर बैठे थे भगवान, छलांग लगा दिए। रुक्मणी सत्यभामा पूछती रह गई, प्रभु कहाँ जा रहे हो। भगवान को जवाब देने का समय नहीं था, अपने भक्त की रक्षा करने में इतने तत्पर रहते हैं। भगवान चले दौड़े, गरुड़ जी ने कहा प्रभु आप मेरे पर बैठ जाओ, मैं तुरंत पहुंचा दूंगा। यद्यपि गरुड़ की गति मन की गति से चलता है, भगवान ने कहा आज तेरी गति भी मुझे धीमी लग रही है, क्योंकि वहां मेरी बहन मुझे पुकार रही है। भगवान ने सोचा कि मेरी गति भी धीमी है। भगवान ने वस्त्र को आदेश दे दिया, आकाश में वस्त्र जा रहा है, पीछे भगवान है और पीछे गरुड़ जी है। और यहाँ पर दुशासन द्रौपदी की साड़ी निकाले, तब तक तो भगवान के द्वारा निकली हुई वह साड़ी पहुंच गई। दुशासन खींचते रह गया, परंतु वह साड़ी समाप्त नहीं हुई, बहुत खींचा, थक गया। कहा जाता है कि 10,000 हाथी के बल रखने वाला दुशासन के मुख से फेण निकल गए, गिर गया, परंतु वह साड़ी पूरी नहीं हुई। दुर्योधन अपनी जांघ ठोकते रह गया कि नग्न करो। दुशासन ने यही कहा कि भैया ये साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी बनाने की फैक्ट्री है, समाप्त ही नहीं हो रही है। इस प्रकार से द्रौपदी की लाज रह गई। भगवान श्री कृष्ण प्रकट भी हुए, परंतु ये प्रेम का स्वभाव, एक संबंध है प्रेम का, देखिए ऐसा संबंध होना चाहिए। द्रौपदी कृष्ण के पास जाकर कहते भैया यदि आपको मेरी लाज रखनी ही थी, मुझे बचाना ही था, तो इतनी देरी क्यों कर दी, इतना सब कुछ करने के बाद आप क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए। कृष्ण भी बोलने में इतने चतुर है, कृष्ण ने यह कहा बहना मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था, परंतु तुमने कहा हे कृष्ण द्वारका वासी पाई पाई जगत पते, तुमने कहा हे द्वारका में रहने वाले कृष्ण जल्दी आओ, तो मुझे तुम्हारा वचन की लाज रखने के लिए यहां से द्वारका जाना पड़ा और वहां से यहां आना पड़ा, इसलिए थोड़ी देरी हो गई, नहीं तो मेरे भक्त की रक्षा करने में मैं थोड़ी भी देरी नहीं करता हूं। नमे भक्ता प्रणश्यति, गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है, कौनते यह प्रतिजानी ही, हे कौनते, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही कर लो ना, ये प्रतिज्ञा करना है तो आप ही कर लो, आप ही कह दो मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम अपने मुंह से बोल दो कि भगवान कृष्ण के भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। अर्जुन पूछता है मेरे मुंह से क्यों बुलाना चाहते हो, आप ही प्रतिज्ञा ले लो। भगवान ने कहा कि संसार के लोग जानते हैं कि मैं कभी कभी मेरी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, परंतु मेरे भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ता हूं। सदैव मैं उनकी रक्षा करता हूं क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। ब्राह्मणा भगवत प्रिया। चित्रकेतु जी कहते हैं कि वैष्णव जो होते हैं भगवत प्रिया, भगवान के प्रिय होते हैं। वास्तव में भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अद्भुत प्रेम। प्रेम निभाना भगवान कृष्ण जानते हैं, इसलिए प्रेम करना है तो एकमात्र कृष्ण से करना चाहिए। देखो भक्तों, यदि हम कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तो संसार की अन्य अन्य वस्तु से प्रेम करेंगे और दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। मैं कल कह रहा था कि हम सबका स्वभाव है प्रेम करना, सब लोग प्रेम करना चाहते हैं, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी सब लोग प्रेम, सब लोग करते हैं। परंतु तकलीफ यह है, जिससे प्रेम करना चाहिए उससे हम प्रेम नहीं करते। हम आत्मा है और आत्मा चिन्मय है, और यह चिन्मय आत्मा संसार की साधारण अचिन्मय और नाशवंत वस्तु से प्रेम करता है तो उससे दुख ही मिलता है। चिन्मय आत्मा को चिन्मय भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए, और यदि हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो जीवन में दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। प्रेम कीजिए, प्रेम करना जीव का स्वभाव है, परंतु भगवान से कीजिए। कल मैं एक प्रभु जी के घर पर गया था, गोविंद भाई के घर पर, तो मैं यही कह रहा था कि भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। तो उनकी पत्नी भी बैठी थी, तो वे सब टेंशन में आ गए कि ये भगवान से प्रेम करने के लिए कह रहे हैं तो हम कहां जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक प्रवचन है। बच्चे भी सोचते होंगे ये प्रभु जी तो ले देकर लग गए हैं कि कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, तो क्या हमको छोड़ दो। नहीं, कृष्ण से प्रेम करना ये प्रैक्टिकल बात है। मैं उनको समझा रहा था कि मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं आप कृष्ण से प्रेम करो, तो इसके पहले और एक बात मैं आपको समझाऊं। आप कृष्ण से नहीं भी प्रेम करोगे तो क्या घर पे बहुत प्रेम से रहते हो? क्या झगड़ा नहीं होता है? क्या दुख नहीं है? संसार में दुख है। एक पति जो होता है कोई अलग परिवार में जन्म लेता है, कुछ अलग ही संस्कार से आता है, और पत्नी भी कोई अलग परिवार में जन्म लेकर कोई अलग संस्कार ग्रहण करके आती है। दोनों का मन अलग, दोनों की बुद्धि अलग, सब कुछ अलग, और दोनों एक साथ में रहने लगते हैं। दोनों के मन में भेद है, बुद्धि में भेद है, लक्ष्य कुछ अलग है, और लक्ष्य अलग होने के कारण कार्य भी अलग है। पति और पत्नी के लक्ष्य अलग होने के कारण उनके कार्य में, मन में, बुद्धि में बहुत असमानता है। इसको जी टीवी देखना है तो वो कहेगी एमटीवी देखना है, उसको ये फिल्म देखना है तो उसको वो देखना है, उसको ये खाना है तो उसको ये खाना है, उसको यहां जाना है, इसको एक को मंदिर जाना है तो एक को वहां जाना है। ये भिन्नता है सब में, क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं, और लक्ष्य अलग अलग, पति और पत्नी के लक्ष्य अलग होने के कारण दोनों के बीच में झगड़ा होता है, होता ही है। परंतु यदि एक पति कृष्ण से प्रेम करने लगे और उनका लक्ष्य कृष्ण को बना ले, और उनकी पत्नी भी कृष्ण से प्रेम करने लगे और उनका लक्ष्य भी कृष्ण हो गया, दोनों के लक्ष्य एक हैं, इसलिए दोनों की बुद्धि भी एक हो जाएगी, मन भी एक हो जाएगा, दोनों के कार्य भी एक हो जाएंगे, जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। सुख ही सुख। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि घर पर साधु संतों की सेवा नहीं है, वैष्णव को भोजन नहीं कराते हो, और आपके जीवन में भक्ति नहीं है, आपके पत्नी पुत्र और आप भक्त नहीं हो, तो नरक जाने की जरूरत नहीं है, ये जीवन ही नरक है। और यदि आपके घर पर वैष्णव का आगमन होता है, ब्राह्मणों का भोजन होता है, भगवान की भक्ति आप भी करते हैं, आपकी पत्नी और पुत्र भी करते हैं, तो स्वर्ग और वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं है, यह जीवन ही वैकुंठ हो जाता है। सुख ही सुख और आनंद ही आनंद मिल जाता है।
ब्राह्मण भगवत प्रिय, भगवान के प्रिय होते हैं वैष्णव, और हमें भी भगवान के प्रिय बनने चाहिए। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द इसलिए है कि वैष्णव जो होते हैं उसे भगवान प्रेम करते हैं। भगवान को तो सब लोग प्रेम करते हैं, परंतु ऐसा कार्य करना है जिससे भगवान हमें प्रेम करने लगे। ये बात थोड़ी आप समझ सकते हैं। ऐश्वर्या राय से सब लोग प्रेम करते हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि ऐश्वर्या राय किससे प्रेम करती है। साधारण दृष्टांत, तो भगवान से तो सब लोग प्रेम करें, परंतु वो किसको प्रेम करते हैं ये मुख्य है। यहां पर कहा गया है भगवान ब्राह्मण वैष्णवों से, उनकी भक्ति करने वाले से प्रेम करते हैं। ब्राह्मण भगवत प्रिय, तो हम सबको भगवान का प्रिय बनना चाहिए, और भगवान के प्रिय होंगे भगवान की भक्ति करके। और भगवान की भक्ति का अर्थ है भगवान की कथा सुनना और भगवान का नाम लेते रहना। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम।